अध्याय 13 प्राचीन भारतीयों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण। प्राचीन भारतीयों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण भूमिका। भारत में यह विचारधारा प्रचलित थी कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था, इसलिए इतिहासकारों का संदेह यह आरोप रहा कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का कोई साधन नहीं है। प्लॉट महोदय के सामने तो यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन काल के हिंदुओं की अभिरुचि इतिहास रचना की ओर थी। अलबुर्नी ने भी यह कहा है, उसने तो यहाँ तक कहा है कि प्राचीन भारतीयों से यदि किसी समय या काल का इतिहास या उस समय की किसी घटना विशेष के विषय में पूछा जाता है तो वे कथाएं कहना प्रारंभ कर देते हैं। एक इतिहासकार ने तो यह भी कह दिया है कि भारतवर्ष का तो कोई इतिहासकार ही नहीं है। एक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने कहा है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी भी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निर्धारित करना कठिन है। बात सही है, भारत में घटनाओं के विवरण तिथि क्रम के सही निर्वाह के प्रति उदासीनता एवं तथ्य निर्देश तथ्य विशेष को कल्पित एवं पौराणिक कथाओं के परिवेश में रहकर विकृत करने की प्रवृत्ति ने इस मान्यता को आधार सा प्रदान किया। इन विद्वानों ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है कि भारतीय घटनाओं के तथ्य परक विवरण रुचि नहीं रखते थे। इन्होंने इस अरुचि के मूलभूत कारणों की खोज की है और उन्हें भारतीय धर्म, मनोवृत्ति, जलवायु आदि में आरोपित करने का प्रयास किया है। डिकिंसन का कहना है कि हिंदू इतिहासकार नहीं हुए हैं। नंबर एक, भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष स्वयं को तुच्छ और असमर्थ पाता है, अतएव उसमें अपनी नगण्यता और जीवन की व्यर्थता की भावना जन्म लेती है। नंबर दो, उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुःस्वप्न के रूप में होती है, दुःस्वप्न का इतिहास नहीं हो सकता। इस प्रकार का विचार टिलहार्ड द सरडिन का भी है। उनका यह कहना है कि भारतीय माया और कर्म के सिद्धांतों में विश्वास के कारण अध्यात्म में ही डूबे रहे और अपनी अत्यंत निष्क्रियता एवं निरपेक्षता की भावना के कारण उनमें विश्व निर्माण की क्षमता का अभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हीराचंद शास्त्री ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार दिए हैं। प्राचीन भारतीयों ने इतिहास की ओर ध्यान नहीं दिया है, इस कारण नहीं कि उनमें ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अभाव था, अपितु इस कारण की वर्तमान भौतिक जीवन की आगामी जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उनके लिए दृश्यमान जीवन माया अथवा प्रमुख रूप था तथा समसान भूमि से परे स्थित जीवन वास्तविक था। अध्यात्म शास्त्र की इस त्रुटिपूर्ण एवं विपर्यस्त अवधारणा के कारण ही हम इस देश के लोगों द्वारा लिखा इतिहास नहीं देखते। ऐसा ना हुआ होता यदि हमारे पूर्वजों ने वर्तमान जीवन के ऊपर भी ध्यान दिया होता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना किया होता। डॉक्टर चंद्रकांत गजानन राजे का कहना है कि काल विवेचन इतिहास रचना का आधार है और भारतीयों ने समय को सदैव गौण स्थान दिया है, अतएव तिथि क्रम के यथार्थ प्रस्तुतकरण की ओर से वे उदासीन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उक्तमतों का खंडन। भारतीयों में ऐतिहासिक लेखन का अभाव था, ऐसा उक्तमतों में वक्तव्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन मतों के विपक्ष में उनका खंडन किया गया है। ये तर्क निम्नलिखित है। नंबर एक, भारतीय विचार में वर्तमान जीवन को कभी भी नगण्य नहीं माना गया। सदैव हिंदू धर्म की यह निष्ठा रही कि सत्य को यही जानना है और इसी जीवन में धर्म का आचरण करना है। नंबर दो, कर्म और मायावाद के सिद्धांतों को निष्क्रियता एवं निरपेक्षता का स्रोत मानना इस सिद्धांत के अज्ञान का परिचायक है। मायावाद के प्रतिपादक शंकराचार्य भी उन कार्यों से विमुख नहीं हुए जिनका निर्वाह वे अपने उत्तरदायित्व समझते थे। नंबर तीन, जगत के मिथ्या तत्व को केवल इतना ही अर्थ है कि यह परम सत्य नहीं है, परम सत्य केवल ब्रह्मा है। कर्म और मायावाद में विश्वास होने पर भी भारतीयों ने एक गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण किया, अतः इस जीवन के महत्व को भारतीयों ने हमेशा समझा है। नंबर चार, यह सही है कि भारतीयों का इतिहास का जो अर्थ आज लगाया जाता है और इसका जो परिभाषा दी जाती है उस रूप में भारतीयों ने इतिहास नहीं लिखा। यहाँ अतीत की स्मृति इतिहास के रूप में नहीं सुरक्षित की गई। नंबर 5, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जिसने इतने सुदूर अतीत का इतना बड़ा भाग सुरक्षित रखा हो। यहाँ का विश्वास था कि हम भारत के वंशधर हैं, जिनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है तथा जिसमें योगदान करते हुए ऋण मुक्त होना लोग अपना कर्तव्य समझते थे। मनुष्य के 3 ऋण इसके उदाहरण है। नंबर 6, ज्ञान की एक शाखा और अध्ययन के लिए एक विषय के रूप में इतिहास को महत्व दिया जाता था। शासकों के लिए इतिहास का अध्ययन पर जोर देते हुए कौटिल्य ने लिखा है, इसका विशेष व्यवहारिक लाभ है। लेकिन यह तो सही है कि जब भी किसी धर्म या दर्शन की प्रमुख परंपरा का संकलन किया गया, इसके लेखकों या प्रतिपादकों के बारे में ठीक ठीक तथा विस्तृत विवरण नहीं रखा गया और न ही परवर्ती अंशों को प्राचीनतर भाग से पृथक रखने की चेष्टा की गई। वेदों पुराणों के रचनाकारों के विषय में हम ज्ञान शून्य हैं। इसी प्रकार जब रामायण महाभारत और पुराणों को जनश्रुति इतिहास के रूप में कल्पित किया गया तथा उन्हें काल्पनिक प्राचीनता से समन्वित किया गया, तो एक आलोचनात्मक विवेक द्वारा ऐतिहासिक सामग्री को अनैतिहासिक सामग्री से अलग नहीं किया गया। भारतीयों ने केवल जानकारी के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के लेखन में अपेक्षित रुचि नहीं लिया, अतीत की सुरक्षा के लिए धार्मिक और काव्य का सहारा लिया गया। साथ ही इतिहास का आदर्श भारतीयों द्वारा अधिक महत्व ग्रहण करता हुआ नहीं प्रतीत होता। समाज और संस्कृति में उन्हीं बातों को सुरक्षित रखा जाता है जिन्हें लोग अपने लिए आवश्यक और मूल्यवान समझते हैं। अतः आध्यात्मिक मूल्यों के इस विशेष बल के कारण ही धर्म भारत में तथा कथित सेक्युलर साहित्य इतना कम और आध्यात्मिक तथा धार्मिक साहित्य इतनी प्रभुत मात्रा में उपलब्ध है। वेद, गीता, पुराण आदि पूरी निष्ठा के साथ दीर्घ काल से संप्रेषित हुए हैं। यहाँ राज्यों तथा राजाओं के इतिहास का लेखन उनके अधिकारियों का काम समझा जाता था। संपूर्ण संस्कृति इसके प्रति अधिक रुचि नहीं रखती थी, अतएव यह कहना सही नहीं है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। उनके मस्तिष्क में इतिहास की अवधारणा थी। भारतीय अत्यंत प्राचीन काल से इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करते रहे हैं। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अत्यंत प्राचीन काल से इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करते थे। ये प्रमाण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य में ज्ञान की एक शाखा को इतिहास वेद कहा गया है। नंबर 2, इतिहास प्राण दोनों संश्लिष्ट रूप में लिखे गए हैं तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नंबर 3, वेद हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथ हैं, इसलिए उनको अपरुषेय माना गया है। इतिहास को वेद कहना ही इस शास्त्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचय देता है। नंबर 4, कौटिल्य ने लिखा है, 3 वेद साम, ऋग, यजुस, वेद या वेद त्रयी बनते हैं। इतिहास वेद के साथ वेद के नाम से जाने जाते हैं। राजा की दिनचर्या में इतिहास श्रवण को कौटिल्य ने अत्यंत आवश्यक बताया है। नंबर 5, वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के इस प्रारंभिक युग में ही ऐतिहासिक साहित्य का सृजन प्रचलन हो चुका था और किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक कृतियों का रूप विद्यमान था। नंबर 6, वैदिक काल में ही ऐतिहासिक साहित्य सृजन की परंपरा अस्तित्व में आ चुकी थी तथा इस युग की ऐतिहासिक रचना विधाओं से कालांतर में विभिन्न ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। नंबर 7, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में सूत्रों का महत्वपूर्ण योग रहा है। वैदिक युग की राजनैतिक संरचना में इन्हें आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। नंबर 8, वंश साहित्य के सृजन की परंपरा काफी लंबी अवधि तक चलती रही। वंश और वंशानुसरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग बताए गए हैं। पुराणों में विभिन्न शासक वंशों के वंश दिए गए हैं। हिंदू सामाजिक संगठन तथा धर्म शास्त्र ग्रंथों का महत्व। भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक युग वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य का अध्ययन करने से हमको भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक समय में ही भारत में ऐतिहासिक साहित्य के सृजन का कार्य आरंभ हो गया था। किसी न किसी रूप में इतिहास की कृतियों का रूप भी विद्यमान था। प्राचीन साहित्य में इतिहास पुराण तथा इतिहास पुराण के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक कृतियाँ आज हमको उपलब्ध नहीं है। मैक्स मूलर का विचार था कि वैदिक साहित्य में जिस सामग्री को पुराण नाम से अभिहित किया गया है उसी का स्थान रामायण तथा महाभारत ने लिया है तथा परवर्ती पुराणों में भी यद्यप कुछ परिवर्तित रूप में इस सामग्री को अस्तित्ववान मानना चाहिए। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि वैदिक युगीन प्राचीन इतिहासों का संप्रेषण मौखिक रूप से होता था। सीग का विचार है कि इसके अवशेष वैदिक साहित्य की विभिन्न शाखाओं ब्राह्मण सूत्रों में बिखरे हुए हैं। ब्राह्मण काल में पुराण साहित्य ने एक निश्चित स्वरूप ग्रहण किया। समय के साथ ही साथ इतिहास साहित्य में बराबर वृद्धि होती गई। व्यास के समय तक एक विशेष प्रकार की रचना प्रतिष्ठित हुई। इन रचनाओं को ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। इस साहित्य में वेदों की व्याख्या की गई है जिसका की एक विशेष दृष्टिकोण रहा है। रचनाकारों को निरुक्त याज्ञिक पूर्वे याज्ञिक वैकरण आदि कहा गया है। सच यह है कि वैदिक काल में ही ऐतिहासिक लेखन की परंपरा शुरू हो चुकी थी। विभिन्न ऐतिहासिक रचना विधानों में आगे चलकर अनेक ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। वैदिक काल के ब्राह्मण काल तक वैदिक याज्ञिक अनुष्ठानों में काफी जटिलता आ चुकी थी। वैदिक कालीन शिक्षा परंपरा मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में बनी रही। इस ऐतिहासिक परंपरा में सूत्रों का महत्वपूर्ण हाथ रहा। वैदिक युगीन राजनीतिक संरचना में इनको विशेष स्थान मिला था। वंश साहित्य की परंपरा काफी लंबे काल तक चलती रही। ऋग्वेद संहिता वैदिक साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः 1500 तथा 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। यह धार्मिक ग्रंथ है। स्वतंत्र ऐतिहासिक रचनाएं अब इसमें अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं मिलती। ऋग्वेद संहिता के कुछ मंत्रों में आर्यों के द्वारा भारत विजय की परंपरा का संकेत मिलता है। इसके अंतर्गत इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। साथ ही इसमें अन्य जन नायकों से संबंधित गाथाओं का भी समावेश है जिनका की विभिन्न अनुष्ठात्मक अवसरों पर संगठन होता था। इंद्र से संबंधित गाथाएं महाकाव्य शैली में है। साथ ही यह स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल से राजनैतिक घटनाओं से संबंधित मौलिक परंपरा का एक विशाल संग्रह मौजूद था। कुछ गाथाओं को मनुष्यों की परंपरा प्रशंसा में रचा गया। इनको नाराशसी कहते हैं। वैदिक साहित्य में इतिहास पुराण तथा आख्यान भी मिलते हैं जो गद्य और पद्य शैली में है। वैदिक साहित्य नंबर एक वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनको ईश्वर प्रदत्त कहा गया है। वेद चार हैं। सभी वेदों में ऋग्वेद अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में आर्य भारत में कहीं तक अपना प्रसार कर सके अनार्यों से उनका संघर्ष सप्त सिंधु का गुणगान आदि बातें ऋग्वेद से जानी जाती हैं। इस आदि ग्रंथ के अभाव में संभवतः कार्यों के विस्तार का पर्याप्त ज्ञान होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा कुल 1028 सूक्त हैं। ब्राह्मण वैदिक मंत्र तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। प्राचीन ब्राह्मण ऐत्रेय पंचवी शतपथ तैत्री आदि विशेष महत्व के हैं। ऐत्रेय के अध्ययन से ही राज्याभिषेक तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी सूचनाओं को अन्य सामग्रियों की सहायता से इतिहास प्रस्तुत बनाया जा सकता है। उपनिषदों के विहदा अरण्यक छंदों की आदि प्राचीन है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। विद्वानों ने सिद्ध किया है कि इनका रचना काल बिंबसार से पूर्व का है। परीक्षित उनके पुत्र जनमेजय तथा बाद के राजाओं का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है जिससे यह स्वीकार किया जा सकता है कि उनकी रचना परीक्षित के कुछ बाद और बिंबिसार से पहले हुई होगी। वास्तव में ब्राह्मण तथा उपनिषदों के सम्मिलित अध्ययन से ही परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक के इतिहास पर कुछ सोचा जा सकता है। उपनिषदों के दार्शनिकता को ध्यान में रखते हुए यह दावे से कहा जा सकता है कि प्राचीन आर्यों का दर्शन अन्य सब देशों से कहीं आगे बढ़ा चढ़ा था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास का ज्ञान उपनिषदों से ही होता है। वेदांग कालांतर में वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ जो वेदांग कहे जाते हैं। मुंडक उपनिषद में 6 वेदांगों का उल्लेख है, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद, सार तथा ज्योतिष। वेदांग की 6 शाखाओं से ही वैदिक पाठ को सरल एवं सुबोध बनाया जाता है। आगे चलकर इन विषयों के पठन पाठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हो गया। इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। महायज्ञों से संबंधित सूत्रों, स्रोत से गृह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों को गृहस्थ सूत्र, धर्म अथवा नियमों से संबंधित सूत्रों को धर्म सूत्र और यज्ञ एवं हवन कुंडों की क्रमशः वेदी एवं नाप आदि से संबंधित को शूल सूत्र कहा गया। वेदांग का यह विस्तृत क्षेत्र तत्कालीन धार्मिक अवस्था का एकमात्र निर्देशक है। इन्हीं सूत्रों में सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कठिनाई यह है कि ये इतने विस्तृत तथा अथाह सागर की भांति हैं कि इनमें ऐतिहासिक तथ्यों को खोज निकालना सरल कार्य नहीं है। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों की रचना तक का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस लंबे अरसे का इतिहास इसी वैदिक साहित्य में प्रकाशित होता है। इतिहास पुराण परंपरा का विकास। इतिहास तथा पुराण का उल्लेख पंचम वेद के रूप में किया गया है। परवर्ती काल में आकर इतिहास शब्द बहुत व्यापक हो गया। इसमें सभी ऐतिहासिक परंपराओं का समावेश किया जाने लगा। इतिहास के ही अंतर्गत पुराण भी आ गए। असली और मूल पुराण शायद एक ही ग्रंथ था। इसमें प्राचीन राजाओं से संबंधित विवरण और कथाएं थी, जिसका संकलन 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोमहर्षण ने किया था। यह भी कहा जाता उन्होंने इसे व्यास से प्राप्त किया। व्यास लगभग 1 शताब्दी पूर्व रहे होंगे। पुराणों से इतर इतिहास में हमें भारत आख्यान, जिसको की कालांतर में महाभारत नाम दिया गया, की परंपरा मिलती है। इससे भी व्यास से ही संबंधित किया गया है। यह ग्रंथ भारत अथवा पौरव शासन वंश के गृह युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध संभवतः 950 से 900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इस ग्रंथ के बीच बीच में अनेक आख्यान है। पुराण से अलग इन्हें ही संभवतः इतिहास के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन कौटिल्य ने इतिहास को साहित्य के एक विशेष वर्ग के रूप में लिया, जिसमें कि पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र सभी का समावेश है। राजकीय वंश वालियों के निरूपण तथा ऐतिहासिक जननायकों की प्रशंसा में गीतों के संकलन का कार्य सूत्र ने किया है। यह पद ब्राह्मणों द्वारा अधिगत रहा प्रतीत होता है तथा कुछ स्रोत इन्हें भार्गव, भारद्वाज तथा कश्यप पुरोहित कुलों से संबंधित करते हैं। इनमें विशेष रूप से भार्गव कुल इतिहास लेखन के साथ विशिष्ट रूप से इतिहास लेखन के साथ संबंध दिखाई देता है। इस क्षेत्र में भार्गव के योगदान को डॉक्टर पाठक की पुस्तक में विस्तार पूर्वक चर्चा मिलती है। भारत परंपरा को भी कालांतर में भार्गव ने अपना लिया। भार्गव और अंगिरस कुलों ने मिलकर भार्गवा अंगिरस परंपरा का निर्माण किया और गौरव शासन वंश के समय से मगध साम्राज्य के उदय तक भार्गवा अंगिरस इतिहासकारों ने का एक संप्रदाय विशेष इतिहासकार था। इसके एक अंश के रूप में पुराण का प्रणयन कर तथा पुरलेखन करता रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्वभौमिक इतिहास लिखने की यह परंपरा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रही। बीच के शासन वंशों को पुराणों में सम्मिलित किया जाता रहा। इस समय तक महाभारत को संभवतः वह रूप प्राप्त हो चुका था, जिसे समीक्षा संपादन के फलस्वरूप इसको अप्रदान किया गया। पुराणों का अभी तक इस प्रकार का संपादन समीक्षा पूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता है। मुख्य पुराणों की संख्या 18 माना गई है। इनमें प्राचीन इतिहास के लिए नंबर 1 वायु पुराण, नंबर 2 मत्स्य पुराण, नंबर 3 मार्कंडेय पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुराण सार्वभौमिक इतिहास की सृष्टि से उद्भव तथा विकास एवं देवताओं से संबंध विभिन्न कथाओं से प्रारंभ होता है। हमारे अपने कल्प का इतिहास मनु वैव स्वत से प्रारंभ होकर भारत युद्ध तक के विभिन्न राजवंशों की चर्चा करता है तथा इसके बाद के विभिन्न राजवंशों की साड़ी का उल्लेख करता है। यह उल्लेखनीय बात है कि पुराणों का संशोधन मध्यकाल या सामंत युग के प्रारंभ में हुआ। इस कारण इसमें राजा का समाज के रक्षक के रूप में निरूपण स्वाभाविक था। पुराणों में यथासंभव प्राचीन इतिहास को इस आदर्श का परिपोषण करते हुए दिखाने की प्रवृत्ति मिलती है। उक्त लेखक ने पहले पुराणों में चर्चित मगध साम्राज्य के पूर्व के विभिन्न सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शासन वंशों का विवरण दिया है और फिर मगध साम्राज्य के शासन वंशों का उल्लेख किया है। इन शासन वंशों के विषय में पुराण में कुछ अनिश्चितता तथा अस्पष्टता मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से तुलना करके इनको शुद्ध किया जा सकता है। सातवाहनों के बाद छोटे छोटे भूप्रदेशों पर शासन कर रहे राजवंशों का इतिहास अत्यंत अस्पष्ट रूप में मिलता है। कुषाण शासकों का जिन्होंने सातवाहनों के साथ मिलकर साथ साथ लगभग 200 वर्ष तक राज किया। पुराण लेखक या तो चर्चा ही नहीं करते अथवा यह माना जा सकता है कि वे तुषार नाम से उल्लिखित हुए हैं। अन्य विदेशी वंशों को मेलेक्स अथवा बर्बर कहकर छोड़ दिया गया। कुछ नाग वंशों का अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूति के साथ उल्लेख किया गया है, लेकिन सभ्यता के पुनर्जीवन की वास्तविक आशा पुनः विंध्य शक्ति द्वारा वाकाटक वंश की स्थापना द्वारा दिखाई देती है। गुप्तों का उल्लेख केवल गंगा के दोआब पर शासन कर रहे एक गौड़ वंश के रूप में होता है। इस प्रकार से हम चौथी शताब्दी ईसा एवं पुराण में लिखित सार्वभौमिक इतिहास के अंत पर पहुँचते हैं। संभवतः यह तिथि इतिहास की अंतिम प्रस्तुतिकरण की तिथि है, यद्यपि कुछ अंशों में परिवर्तन बाद में भी होते रहे हैं। पुराणों की प्राचीनतर सामग्रियां अधिकाधिक प्रमाणिक हैं। इनमें ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो प्राचीन इतिहास पुराण के विशेषज्ञ होते थे। इनके लिए पुराणिक आदि विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में विद्वानों का एक ऐसा निश्चित वर्ग था जिसका काम पुराण इतिहास का अध्ययन, संरक्षण और आगे आने वाली पीढ़ी का उसका सुसंपादित दान था। ऐसी परिस्थिति में पौराणिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रमाणिक होती थी। भारतीय परंपरा में पुराणों की प्रामाणिकता और महत्ता वेदों के समान मानी गई है। पुराण अपने को वेद संहिता अथवा वेद सम्मित मानते हैं। वहीं पुराण अपने को पुराण वेद कहता है। सारी पौराणिक परंपरा को श्रुति की संज्ञा दी गई है, उनके पदों को सुक्त कहा गया है। वेदों का साक्षात्कार ऋषियों को हुआ था। बहुत से पुराण अपने को देवताओं द्वारा प्रोक्त बतलाते हैं। पद्म पुराण तो अपने को विष्णु का रूप ही मानता है। इस परंपरा और मान्यता के पीछे तथ्य यह था कि वास्तव में वैदिक परंपरा ही अपनी परवर्ती और पार्श्ववर्ती प्रभा को समेटती हुई पुराणों में अवतरित हुई थी। हाँ, यह संभव है कि संकलन तथा संपादन में भ्रांतियां और त्रुटियां हुई। पुराणों के संबंध में भ्रांतियां और उनका निवारण। कुछ लोगों ने पुराणों को इसलिए अप्रमाणिक मानना स्वीकार किया है कि इसके प्राचीन वर्णों का कोई वस्तु प्रमाण नहीं मिलता। इस संबंध में सबसे बड़ी भूल वह मानता है कि सभी अत्यंत प्राचीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए वस्तु प्रमाण मिल सकता है। वास्तव वस्तु प्रमाण की एक सीमा है। सीमित काल के पहले का वस्तु प्रमाण अपनी क्षयशीलता के कारण नहीं मिल सकता। सीमित काल के भीतर भी जहाँ का वस्तु प्रमाण को शीघ्र नष्ट करने वाला था, जहाँ की जल नदियाँ और उनकी बाढ़ वस्तु प्रमाण को बहा ले जाने वाली है, वहाँ वस्तु प्रमाण नहीं प्राप्त होता। प्राणों के बाह्य प्रमाण दो प्रकार के हैं, साहित्य प्राण, नंबर 2 वस्तु प्रमाण। पौराणिक परंपरा की दृष्टि संस्कृत के रामायण, महाभारत, महाकाव्य तथा नाटक आदि के पूर्ण रूप में होती है। यदि वह परंपरा वास्तविक न होती तो जनता के जीवन में इसका इतना गहरा प्रवेश न होता। बौद्ध एवं जैन साहित्य से भी पौराणिक परंपरा का समर्थन होता है। मौर्य वंश के अशोक से लेकर गुप्तों के आगमन तक के राजवंशों के संबंध में वस्तु प्रमाण या पुरातात्विक प्रमाण बराबर मिलते हैं। इसके पूर्व का भारतीय इतिहास वस्तु प्रमाण संरक्षण 6 बालुका में सिंधु घाटी में ही मिलता है। पौराणिक परंपरा से सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या संबंध है, यह कहना कठिन है, लेकिन संबंध असंभव नहीं है। पुराणों के संबंध में दूसरा भ्रम पार्जिटर ने फैलाया है। उन्होंने अपने ग्रंथ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में उन्होंने यह स्थापना किया है। प्राचीन भारत में दो साहित्यिक परंपराएं थी, नंबर एक ब्राह्मण परंपरा, नंबर दो क्षत्रिय परंपरा। उनके अनुसार वैदिक साहित्य ब्राह्मण परंपरा का और पुराण मूल रूप से क्षत्रिय परंपरा के थे, जिनके पीछे ब्राह्मणों ने अपने हाथ में कर लिया, अपने स्वार्थ के अनुरूप उन्होंने परिवर्तन कर लिया। वास्तव में यह प्रस्थापना एकदम निराधार है। भारतीय वांड में अथवा साहित्य में इस प्रकार का कोई भेद नहीं था। द्विजाति पुस्तक में शिक्षित मात्र को संपूर्ण वांड में पर अधिकार था, जितना ब्राह्मण का ऋग्वेद के संरक्षण। नव ऋषि परिवारों में तीन वैवस्वत एल तथा चाछूत क्षत्रिय थे। वैदिक ऋषियों में विवस्वान का मनुष्य पूर्वस पुरुर्वस याति मानधाता विश्वामित्र आदि प्रसिद्ध ऋषि क्षत्रिय वर्ग के थे। इसी प्रकार पौराणिक सूत्र पुराणकार संहिताकार व्यास आदि में अधिकांश ब्राह्मण थे, अतः वैदिक तथा पौराणिक वांडमय में कोई भी एकांततः प्रमाण अथवा क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। अर्थातः दोनों ही अवचिन्न भारतीय साहित्य के अंग और समवर्तन भारतीय परंपरा के स्रोत हैं। हाँ, मूलतः पौराणिक परंपरा ऐतिहासिक है और वैदिक साहित्य धार्मिक। इसी कारण राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से पुराण अपेक्षाकृत अधिक महत्व के हैं। प्राचीन भारत के वंशगत एवं राजनीतिक इतिहास के निर्माण के लिए पुराणों का साक्ष्य भाषा विज्ञान के अनुमानों और वैदिक साहित्य के अनुसांगिक संकेतों से कहीं अधिक प्रमाणिक तथा मूल्यवान है। प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं विधिक विचारों एवं संस्थाओं के अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों का योगदान। काफी समय से विद्वानों की यह मानता रही कि भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था, इसलिए पाश्चात्य विद्वान सदैव यह आरोप करते रहे कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का कोई साधन नहीं है। लिट महोदय के सामने यह प्रश्न उठा कि क्या प्राचीन काल के हिंदुओं की अभिरुचि इतिहास रचना की ओर थी। यही बात तो अलबुर्नी ने भी कहा। उसने तो यहाँ तक कहा कि प्राचीन भारतीयों से किसी समय या काल का इतिहास या उस समय की घटना विशेष के विषय में पूछा जाता है तो वे कथाएं कहना प्रारंभ कर देते हैं। एल्फिंस्टन का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व के किसी भी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निर्धारित करना कठिन है। लोयस डिकिंसन ने स्पष्ट लिखा है कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। उसके अनुसार भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और असमर्थ पाता है, परिणाम स्वरूप उसमें नगण्यता तथा जीवन की निस्सारता जन्म लेती है। उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुःस्वप्न के रूप में होती है। दुःस्वप्न का इतिहास नहीं होता, ऐसा उनका तर्क है। यहाँ तक कि दुनिया के वे लोग भी ऐसा ही कहते हैं जो हर चीज का स्रोत भारत में खोजने का प्रयास करते हैं। अपने को राष्ट्रवादी इतिहास कहने वाले आरसी मजुमदार भी मजबूरन स्वीकार करते हैं कि उन तत्वों का जिनके कारण इतिहास को मानव विज्ञान की प्रतिष्ठा मिली है, भारत में उनका अभाव रहा है। वैसे इस बात को सबकी सुना सुनी दोहरा देनी चाहिए, बल्कि इस पर विचार करते हुए लिखा है कि क्या वह वजह है कि हेरोडेटस की जन्मभूमि यूनान के संपर्क में आने के बाद भी भारत में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू नहीं हुई। इसका कारण भारतीयों की तटस्थता, निरपेक्षता, पलायनवादिता या बौद्धिक कार्यों के से कोताही तो नहीं हो सकता। यह भी सच नहीं है कि भारतीय अतीत के प्रति उदासीन रहे हों। भारतीय सदा से अपने अतीत के प्रति आकर्षित रहे हैं, उससे प्रेरणा लेते रहे हैं और परंपराओं में उसे जीवित भी रखते हैं। इस देश में जहां मनुष्य दैवी शक्तियों और ईश्वर के हाथों की कठपुतली माना गया है, वहीं उसके धर्मों कर्मों की प्रतिष्ठा भी रही है, तब इतिहास लेखन और दर्शन के प्रति उनकी सजगता का कलहड़ के पहले कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता। डॉक्टर हीरा चंद शास्त्री ने भी कहा है कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास की ओर ध्यान नहीं दिया, इस कारण नहीं कि उनमें ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अभाव था, अपितु इस कारण की वे वर्तमान भौतिक जीवन की अपेक्षा आगामी जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उनके लिए दृश्यमान जीवन मात्र माया और धर्म स्वरूप था तथा शमशान भूमि से परे स्थित जीवन वास्तविक था। अध्यात्म शास्त्र की इस त्रुटिपूर्ण एवं विपर्यस्त अवधारणा के कारण ही इस देश के लोगों द्वारा लिखा इतिहास नहीं देखते ऐसा ना हुआ होता तो यदि हमारे पूर्वजों ने वर्तमान जीवन के ऊपर भी ध्यान दिया होता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना किया होता। चंद्रकांत गजानन राजे का कहना है कि काल विवेचन इतिहास रचना का आधार है और भारतीयों ने समय को सदैव गुण स्थान दिया है, अतएव तिथि क्रम के यथार्थ प्रस्तुतिकरण की ओर से उदासीन रहे हैं। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने डिकिंसन के मत का खंडन करते हुए लिखा है कि उनका विचार हास्यास्पद प्रतीत होता है। भारतीयों ने वर्तमान जीवन को कभी नगण्य नहीं माना। यदि इतिहास कर्म प्रधान रहा है तो भारतवर्ष सदैव महापुरुषों की कर्म भूमि रहा है। पृथिव्याम भारतवर्ष कर्म भूमि रुदाहिता ब्रह्मा प्राण सत्ताईस से दू देहम लब्धा विवेकाढ्यम विगत्वम च विशेषतः तात्रापि भारतवर्ष कर्म भूमो सुदुर्लभ है। अध्यात्म पुराण 66.451। पर्याति कर्म भूमि ब्राह्मण नान्य लोकेषु विद्यते मार्कण्डेय पुराण 57-62। अभी सपूजितम यस्माद् भारत बहु पुण्यदम कर्म भूमि रतो दैवर्षम दैवे वर्षम तस्मात् प्रकीर्तितम ब्रह्मा पुराण 70-24। उक्त मतों का खंडन। भारतीयों में ऐतिहासिक लेखन का अभाव था ऐसा उक्त मतों में व्यक्त किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन मतों के विपक्ष में उनका खंडन किया गया है। ये तर्क निम्नलिखित है। नंबर 1, भारतीय विचार में वर्तमान जीवन को कभी भी नगण्य नहीं माना गया। हिंदू धर्म की सतह यह निष्ठा रही है कि सत्य को यही जानना है और इसी जीवन में सत्य का आचरण करना है। कर्म और मायावाद के सिद्धांतों को निष्क्रियता एवं निरपेक्षता का स्रोत मानना इस सिद्धांतों के अज्ञान का परिचायक है। मायावाद के प्रतिपादक शंकराचार्य भी उन कार्यों में विभुक्त नहीं हुए हैं जिनका निर्वाह वे अपना उत्तरदायित्व समझते थे। नंबर 3, जगत के मिथ्या तत्व का केवल इतना ही अर्थ है कि यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो केवल ब्रह्मा है। कर्म और मायावाद में विश्वास होते हुए भी भारतीयों ने एक गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण किया है, अतः इस जीवन के महत्व को भारतीयों ने हमेशा समझा। नंबर 4, यह सही नहीं है कि इतिहास का जो अर्थ आज लगाया जाता है और इसकी जो परिभाषा आज दी जाती है उस रूप में भारतीयों ने इतिहास नहीं लिखा। यहाँ अतीत की स्मृति इतिहास के रूप में सुरक्षित नहीं की गई। नंबर 5, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसने इतने सुदूर अतीत का इतना बड़ा भाग सुरक्षित रखा हो। यहाँ का विश्वास था कि हम भारत के वंशधर हैं जिसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है तथा जिसमें योगदान करते हुए ऋण मुक्त होना लोग अपना कर्तव्य समझते थे। मनुष्य के 3 ऋण इसके उदाहरण है। नंबर 6, ज्ञान की एक शाखा और यह धन के एक विषय के रूप में इतिहास को महत्व दिया जाता था। शासकों के लिए इतिहास अध्ययन को महत्व देते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इसका विशेष व्यवहारिक लाभ है। नंबर 7, इतिहास का आधार क्रमबद्ध घटनाएं हो सकती हैं। भारत में लौकिक घटनाओं को महत्व देना यथार्थवादी होना था और भारत का दर्शन आरोपित और स्वीकृत बहुलांश आदर्शवादी था। यहाँ भौतिक जगत की प्रतिष्ठापना और इतिहास के सूत्रपात की संभावना थी। प्रचारवाद के सिद्धांत को महज ऋण लेकर भी घी पीने की बात तक सीमित कर दिया गया और सुनियोजित व्यापक षड्यंत्र के द्वारा भारतीय चिंतन परंपरा के भौतिकवादी पक्ष को बदनाम और धूमिल करके गायब कर दिया गया। नंबर 8, धर्म के अधिक प्रभाव होने के कारण लोकोत्तर का ही भाव जन जीवन पर छाया हुआ था। यही कारण है कि पुराण भी इतिहास नहीं बन पाए जबकि उनमें इतिहास बनने की भरपूर शक्ति है। वे नीति धर्म दर्शन के स्रोत तो बने पर इतिहास नहीं। यह सच है कि उस समय के लोगों में ऐसी विद्वता का कोई महत्व नहीं था जो इतिहास लिखने के लिए आवश्यक होती। उस समय ज्ञान की प्रतिष्ठा नीति और धर्म तक सीमित थी। काल संदर्भ में परिवर्तन और प्रगति में विश्वास लौकिक जीवन की महत्ता घटनाओं की अस्मिता आदि बातें इतिहास के स्वरूप के आधार होते हैं। भारत में इसका अभाव था और इनको गौण स्थान दिया जाता था। नंबर 9, वैसे हमारे भारतीय वाण्मय में ऐसे अनेक शब्दों का प्रचलन था जिनको जोड़कर इतिहास का आधिक अर्थ बनता है। इतिहास के अतिरिक्त ये शब्द भी मिलते हैं पुराणों के अतीत इतिवृत्ति से घटनाओं का अध्यायिका से इहलोक का परलोक के आख्यानों का बोध होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और महाभारत जैसे ग्रंथों में इतिहास के तत्व मिलते हैं। जैन ग्रंथों में इतिहास कथाओं में भिन्न जो वास्तव में घट गया हो कहा को कहा गया है। इस अवधारणा में 19वीं शताब्दी के महान जर्मन इतिहासकार रानके का पूर्वाभास है। इतना सब होते हुए भारत में अतीत का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला है जिससे कि भारतीय दर्शन में लगे मनुष्यों ने भी इस दिशा में कुछ विस्तार और सुनियोजित ढंग से सोचा और विचारा हो। राजतरंगड़ी के पहले का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जिससे कि आधुनिक अर्थों में इतिहास के ग्रंथ की संज्ञा दी जा सके। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में सैद्धांतिक रूप से इतिहास का निरूपण भले ही थोड़ा बहुत किया गया है लेकिन इतिहास का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। हाँ यदि रूसी विचारक वर्दीयेफ की भांति कोई इतिहास को मिथक की संज्ञा दे दे तब तो भारत में प्राचीन काल से ही इतिहास उपलब्ध होने लगेंगे। हाँ भारत में वो लोग राजनीति से अलग थलग पड़ गए थे जैसे कि सिंध सुदूर पूर्व और दक्षिण वहाँ शायद इतिवृत्ति लिखा जाता रहा हो जैसा कि हेनसांग ने लिखा है कि लोग वह अच्छा हो या बुरा लिखते थे पर कुछ उपलब्ध नहीं है। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी राजतरंगड़ी लिखा। उसने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों का अध्ययन किया और कश्मीर के अतीत के चित्र को प्रस्तुत करना चाहा। पुस्तक के कुल 8 भाग हैं। पहले 8 भागों का आधार है वे परंपराएं हैं जो कश्मीर मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही थी। दूसरे 3 भागों का आधार पहले लिखे गए इतिवृत्ति है। केवल अंतिम 2 भाग कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी और तत्कालीन साक्ष्यों पर आधारित है। कल्हड़ ने लिखा है कि उसके राजतरंगड़ी लिखने प्रमुख 3 उद्देश्य थे। पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना और अतीत से शिक्षा लेना। लेकिन जैसा कि वैषम का मत है कि कल्हड़ ने नैतिकता की बातें अधिक की है, तथ्यों के आपसी संबंधों की कम। जो भी हो राजतरंगड़ी का आरंभिक इतिहास ग्रंथ के रूप में महत्व को स्वीकार करना ही होगा। हमारे यहाँ उत्तर भारत में जब सल्तनत स्थापित हो गई, तो दरबारों में इतिहास लिखने का काम आरंभ हो गया। अरबों ने कुरान और हदीस की वास्तविकता को स्थापित करने का काम इतिहासकारों को सौंपा। इसलिए 7वीं शताब्दी से ही मुस्लिम इतिहासकारों से इतिहास लेखन की परंपरा भारतीय इतिहासकारों को प्रेरणा और विरासत के रूप में प्राप्त होने लगी। लेकिन 11वीं और 18वीं शताब्दी तक लिखे गए मिनहाज उस सिराज जियाउद्दीन बरनी बदायूनी अबुल फजल खाफी खां और फिरिश्ता आदि द्वारा लिखे गए इतिहास के ग्रंथों में राजा दरबार उद्योग और षड्यंत्रों का ही वर्णन अधिक किया गया है। इनमें किंवदंतियां अफवाहों प्रशस्तियों को देकर इतिहास लिखा गया है। यदि इन्हीं ग्रंथों को आधार मानकर कोई उस समय का इतिहास लिखना चाहे तो सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक बातों का संतोषजनक वर्णन नहीं मिल पाता है। जो भी हो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मुस्लिम इतिहासकार को विश्वसनीय निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन सत्य यही है कि बर्नी भी वैसा इतिहास नहीं लिख सका। 16वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय मिशनरियों यात्रियों और व्यापारियों का आना संभव होता है। वे इस दुनिया से आश्चर्यचकित हुए। कुछ तो अपने देखी सुनी और अनुभव की बातों को लिख भी डाले थे। यूरोप के पुनर्जागरण के बाद उनमें भारतीय रहस्यों को जानने की जिज्ञासा जागी। उन्होंने भारत के विभिन्न पक्षों को खोज करना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज के अस्थायी होते हुए प्राचीन और तत्कालीन भारत पर यूरोपीय लोगों ने कितने ही ग्रंथों की रचना कर डाली। फल हुआ कि प्राचीन भारत की विद्वानों और साहित्य की विश्व भर में धूम सी मच गई। अब प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाने लगा। 19वीं शताब्दी जब चेतना का संचार हुआ और भारतीय मध्यम वर्ग अस्तित्व में आ गया, तब भारतीयों ने भी अन्य क्षेत्रों की भांति इतिहास लेखन का शुभारंभ किया। यूरोपीय कंपनियों के अभिलेखों शोध ग्रंथों और पुस्तक ने आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत की। भारतीय लेखकों ने इनका अनुकरण किया और प्रायः प्राचीन भारत के क्षेत्र में अपना काम सीमित रखा। संभवतः अपनी गुलामी से पलायन का उनके लिए यही तरीका था कि अपने वैभवशाली अतीत की ही शरण ली जाए। दूसरे यह कि प्राचीन भारत के संबंध में कुछ भी लिखा जा सकता था, इस प्रकार सत्ता के साथ टकराने का अवसर कम था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में रुचि लेना शुरू कर दिया, पर अभी तक उनके सामने अपना कोई इतिहास दर्शन नहीं था। उन्होंने केवल पाश्चात्य इतिहास लेखकों की नकल करना अपना उद्देश्य जैसे बनाया हो। बीके सरकार ने पाजीवित विचारों के इतिहास पर प्रभाव देकर इतिहास विज्ञान पर लिख डाला और इतिहास को भौतिकी की भांति विज्ञान की संज्ञा दे दी। पश्चिमी विचारों के प्रभाव में कुछ लेखकों ने चिंतन लेखन शुरू किया, जो कि उस समय के लिए स्वाभाविक ही था। केशव चंद्र सेन, हेगल और कलाइल के प्रभाव में इतिहास में ईश्वरीय तत्व और विभूतियाँ की महानता को स्वीकारा और उन्हें ही निर्णायक मान लिया। वे संकुचित राष्ट्रीयता से ऊपर उठे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इतिहास के प्रति अपनी जागरूकता दर्शाई। तथ्यों के इतिहास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उस समय के इतिहास चिंतकों में अरविंद का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। उन पर जर्मन रोमांटिसिज्म आदर्श का विशेष प्रभाव था। हेगेल की भांति उन्होंने भी यह माना कि इतिहास में दैवी इच्छा अपने को एजेंटों के माध्यम से चरितार्थ करती है, उन्हें ही महापुरुष कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की नियतिवादी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने प्राचीन आधुनिक तथा पूर्व और पश्चिम का समन्वय करते हुए इतिहास के प्रगतिवादी सिद्धांत की स्थापना की। उस प्रगति में आज के विचारक पीएमसी महोदय का भी विश्वास, महादेवन का भी विश्वास है। इन विचारकों का योगदान यह है कि भारतीय चिंतन परंपरा की नियतवादिता के साथ प्रगतिवाद को भी स्थापित किया गया, लेकिन इतिहास के क्षेत्र में भौतिक चिंतन का सर्वथा ही अभाव रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद आई नवीन चेतना के बाद शिक्षित भारतीयों में अपने आज सम्मानजनक और संकट में पड़े वर्तमान की तुलना जब अपने गौरवशाली अतीत से किया, तो उनमें भी अपनी शक्ति को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने जब यह देखा कि अंग्रेजों ने इतिहास का उपयोग अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए किया है, तब उनकी समझ में आया कि इतिहास का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में कर सकते हैं। अब भारतीयों ने तत्कालीन लाभ के लिए इतिहास लिखना शुरू कर दिया। ऐसा इतिहास राजनीति संगत होते हुए भी भाववादी था। इसमें वस्तु निष्ठता की अवहेलना की जाती थी। जब स्पिल से लेकर विंसेंट स्मिथ तक अंग्रेज इतिहास लेखकों ने भारत में अंग्रेजी राज्य को न्याय संगत सिद्ध करने का प्रयास किया था, इसी प्रकार के केपी जायसवाल और शिवाजी नुमानी आदि ने राष्ट्रवादी चेतना को पुष्ट करने में इतिहास का प्रयोग किया। राज चौधरी, राजा कुमुद मुखर्जी और जी सी ओझा ने भारत के अतीत की भूरी भूरी प्रशंसा की। लोग मानने लगे थे कि भारत की साहित्यिक और दार्शनिक उपलब्धियां महान थी, पर उसे राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ माना गया था। जायसवाल ने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक दृष्टि से भी यह देश अत्यंत महान था। इस प्रकार से भारतीय इतिहासकार लोकप्रियता प्राप्त करने लगे और राष्ट्रवादी चेतना के महत्वपूर्ण अंग बन गए। अति राष्ट्रवादिता भी सच्चे इतिहासकार की कसौटी नहीं है। तथ्यों की मनमानी व्याख्या करके अतीत की रंगीन तस्वीर प्रस्तुत कर देना ही इतिहास का गुण नहीं। भंडारकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इतिहास जज होता है, वकील नहीं, जो जाति या देश को मुवक्किल समझकर इतिहास में उसके पक्ष में तर्क ढूंढे। उसका एकमात्र उद्देश्य अतीत के सत्य की खोज है। यह कार्य इतिहासकार को जागरूक होकर करना चाहिए। एनजी जापेकर ने भी यही बात कही। इतिहास अतीत का महत्वपूर्ण और विशिष्ट घटनाओं का, जिनकी अपनी अस्मिता होती है, कोष है। इतिहासकार को अपनी व्याख्या ज्ञान के हित में नहीं, ज्ञान के हित में करनी चाहिए। जदुनाथ सरकार ने इतिहास और साहित्य के बीच विभाजक रेखा खींचने में हमेशा कठिनाई का अनुभव किया है। उन्होंने शोध का वैज्ञानिक तरीका अपनाया। भारतीय इतिहास लेखन में वैचारिकता, विश्लेषण, चिंतन और वैज्ञानिकता की कमी के प्रति वे सचेत थे। उन्होंने इतिहास में सत्यम बुराई पर जोर दिया। सत्य भले ही प्रिय हो उसे देश का गौरव घटे या बढ़े, सम्मान मिले अथवा असम्मान, वे सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी लिखने को तैयार न थे। जवाहरलाल नेहरू के विचार से अतीत और वर्तमान और भविष्य को अलग करके नहीं देखा जा सकता, उनके संबंध में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हो सकता। अतीत में उनकी रुचि इसलिए थी कि अतीत वर्तमान का स्रोत होता है। पाड़िकर एक विद्वान इतिहासकार थे जो भारत के अतीत में मोह करते थे। उन्होंने महाभारत और रामायण की तुलना होमर के ग्रंथों से की है और उनमें इतिहास के तथ्यों को तलाशा। उनका कहना था कि किसी देश का इतिहास व्यर्थ होगा यदि वहाँ के निवासियों को बेहतर और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा और उनके लिए संघर्ष के लिए प्रेरित ना करे। ताराचंद ने भी एक और तो यह माना कि इतिहास एक व्यक्ति सापेक्ष लेखन है, लेकिन उसका आधार इतिहासकार की रुचि, उसका चुनाव और निर्णय होता है। दूसरी तरफ यह भी कहा कि इतिहासकार को सत्य और केवल सत्य की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। रमेश चंद मजुमदार ने जोर देकर कहा है कि कोई भी हिंदू, मुसलमान या अंग्रेज भारतवर्ष का पूर्णतः वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। यह तो सत्य है कि अंग्रेजी राज के पहले संपूर्ण भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं था। धर्म और भावना के नाम पर हिमालय और सागरों से घिरे पूरे भारत के गीत भले ही गाए जाते रहे हों, पर वास्तविकता यह थी कि देश सिमट कर मगध, मालवा या चित्तौड़ बन गया था। सामान्य लोगों के लिए अपने गांव से निकलकर कुछ मिल जाने पर प्रदेश शुरू हो जाता था। भारत का इतिहास दिल्ली का ही इतिहास होता था, जबकि पहले दिल्ली या उसके पूर्ववर्ती नगर शाहजहांबाद, थानेश्वर, हस्तिनापुर कभी भी पूरे देश की राजधानी नहीं रहे हैं। आज भी दक्षिण भारत के इतिहासकार क्षुब्ध रहते हैं कि दिल्ली को ही केंद्र मानकर इतिहास लिखा जाता है और दक्षिण भारत का इतिहास उत्तर में प्रायः अज्ञात ही रहा है। ऐसे में भारत एक भावना, एक सिद्धांत और आदर्श भले ही रहा हो, एक राजनीतिक यथार्थ कभी नहीं रहा। यथार्थ तो यही है, लेकिन हमें अपने मूल बिंदु पर आना है और यह देखना तथा सिद्ध करना है कि भारतीयों में पहले से ही इतिहास की अवधारणा थी, वह चाहे किसी भी रूप में रही हो। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं है जिसमें इतने बड़े सुदूर भविष्य को सुरक्षित रखा हो। अतीत का स्वरूप दो प्रकार का होता है, मृत अतीत और जीवित अतीत। मृत अतीत में घटनाएं और व्यक्ति आते हैं तथा जीवित अतीत में परंपराओं का संप्रेषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। निश्चित रूप से परंपरा के प्रति चेतना और उत्तरदायित्व की भावना भारतीयों में विशेष रूप से विद्यमान थी। इसी भावना के कारण प्राचीन ग्रंथों का संपादन समय समय पर होता रहा, और यही नहीं वरन भारतीयों ने इतिहास की पुस्तकों को सदैव नूतन तथा बुद्धिगम्य बनाने का प्रयास भी किया। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन काल से आज तक भारतीयों में इतिहास की अवधारणा थी, भले ही आजकल की तरह इतिहास ना लिखा जाता रहा हो। आज के इतिहास लिखने का ढंग या आज की ऐतिहासिक अवधारणा इतने दिनों के चिंतन के विकास का परिणाम या उसका विकसित रूप है। परिणाम स्वरूप समय तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय इतिहासकारों ने ऐतिहासिक ग्रंथों का संपादन किया है। इतिहास की अवधारणा के प्रति विशेष चेतना का प्रमाण इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। भारतीय अवधारणा के अनुसार इतिहास एक निरंतर चलायमान युग चक्र है। मानव जीवन और उसका सुख दुख इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक चक्र चार युग में विभक्त है, कृत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यह युग चक्र बराबर चलता रहता है। धर्म की अपेक्षा और मानव जीवन का कष्ट जब कभी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए ईश्वर को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। अवतारवाद भारतीय इतिहास की अवधारणा है, राम और कृष्ण का जन्म इसका उदाहरण है। भारतीय इतिहास की अवधारणा में अवतारवाद के सिद्धांत से धार्मिक आवरण को हटा दिया जाए तो विभिन्न अवतारों को महान व्यक्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इन महान व्यक्तियों ने जन्म लेकर युग को कष्टों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। समाज में जितने भी लोग जन्म लेते हैं सभी का उल्लेख इतिहास में नहीं किया जाता, कुछ ही लोग जननायक का काम करते हैं। प्राचीन काल से आज तक जननायकों में जन्म लेकर समाज का नेतृत्व किया है और इतिहास का निर्माण किया है। भारतीय अवधारणा में कर्म को प्रधानता दी गई है। यहाँ यह माना जाता है कि मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही फल पाता है। कर्म के पीछे निश्चित ही कोई एक शक्ति होती है जो कर्मानुसार फल दिलाने का काम करती है। भारतीय इतिहास की अवधारणा के अनुसार इतिहास का सिद्धांत व्यक्तिवाद है। समाज में सबसे मोक्ष की परिकल्पना भारतीय समाज के विपरीत है। बौद्ध, जैन और सिख धर्म में मोक्ष को प्रधान माना गया है और उसकी प्राप्ति के लिए साधनों की खोज की गई है। कर्म मानव इतिहास का कारक है। बौद्ध धर्म के अनुसार संन्यास की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम में कर्म के द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति आंदोलन के संतों ने भी ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया और भक्ति तथा कर्म को मोक्ष का साधन माना। मोक्ष से ही मानव इतिहास का अंत होता है। कर्म का सिद्धांत पलायन नहीं सिखाता। संकल्प शक्ति का मनुष्य युग मानव है। ऐसा मनुष्य अपने कर्मों द्वारा इतिहास को दिशा दे सकता है। भारत में जब कभी भी किसी धर्म या दर्शन की प्रमुख परंपरा का संगठन किया गया, इसके लेखकों या प्रतिपादकों के बारे में ठीक ठीक तथा विस्तृत विवरण नहीं रखा गया, न ही परवर्ती अंशों को प्राचीनतर भाग से पृथक रखने की चेष्टा की गई। वेदों और पुराणों के रचनाकारों के विषय में हम ज्ञान सुन है। इसी प्रकार जब रामायण, महाभारत और पुराणों को जनश्रुति इतिहास के रूप में कल्पित किया गया तथा उन्हें काल्पनिक प्राचीनता संबंधित किया गया, तो एक आलोचनात्मक विवेक द्वारा ऐतिहासिक सामग्री को अनैतिहासिक सामग्री से अलग नहीं किया गया। भारतीयों ने केवल जानकारी के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के लेखन में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाया। अतीत की सुरक्षा के लिए धार्मिक और काव्य का सहारा लिया गया। साथ ही इतिहास का आदर्श भारतीयों द्वारा अधिक महत्व ग्रहण करता हुआ नहीं प्रतीत होता। समाज और संस्कृति में उन्हीं बातों को सुरक्षित रखा जाता है जिन्हें लोग अपने लिए आवश्यक और मूल्यवान समझते हैं। अतः आध्यात्मिक मूल्यों के इस विशेष बल के कारण ही भारत में तथा कथित सेक्युलर साहित्य इतना कम और आध्यात्मिक तथा धार्मिक साहित्य इतनी प्रभुत मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ राज्यों तथा राजाओं के इतिहास का लेखन उनके अधिकारियों का काम समझा जाता था। अतएव कहना सही नहीं है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। भारतीय अत्यंत प्राचीन काल से इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करते रहे हैं। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अत्यंत प्राचीन काल से इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करते रहे हैं। इन प्रमाणों को संक्षेप में नीचे लिखा गया है। नंबर एक, ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य में ज्ञान की एक शाखा को इतिहास वेद कहा गया है। नंबर दो, इतिहास पुराण दोनों संस्कृत रूप में लिखे गए हैं और उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नंबर तीन, वेद हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं, इसलिए उनको अपरिसीय माना गया है। इतिहास को वेद कहना ही इस शास्त्र के प्रति दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचय देता है। कौटिल्य ने लिखा है कि तीन वेद ऋग, यजुर्, साम वेद त्रयी बनते हैं। इतिहास वेद के साथ वे वेद के नाम से जाने जाते हैं। राजा की दिनचर्या में इतिहास श्रवण को कौटिल्य ने आवश्यक माना है। नंबर पाँच, वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के आरंभिक युग में ही ऐतिहासिक साहित्य का सृजन किया जाने लगा तथा और किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक कृतियों का रूप विद्यमान था। नंबर छह, वैदिक काल में ही ऐतिहासिक साहित्य सृजन की परम्परा अस्तित्व में आ चुकी थी तथा इस युग की ऐतिहासिक रचना विधाओं से कालांतर में विभिन्न ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। नंबर सात, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा सूत्रों का महत्वपूर्ण योग रहा है। वैदिक युग की राजनीतिक संरचना में इन्हें आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। नंबर आठ, वंश साहित्य के सृजन की परंपरा काफी लंबी अवधि तक चलती रही। वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग बताए गए हैं। पुराणों में विभिन्न शासक वंशों के वंश वृक्ष दिए गए हैं। मूल्यांकन, अतएव कह सकते हैं कि भारतीयों में इतिहास के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त था जो आज भी अन्य रूपों में देखा जा सकता है। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा के शब्दों में, आजकल भारतवर्ष में इतिहास लेखन और जो कुछ लिखा गया है उसके पुनर्लेखन की एक साथ बात की जा रही है, जहां जाति धर्म और राष्ट्र के नाम पर अनेक ग्रंथियां बनी हुई हैं, पूर्वाग्रह संजोए गए हुए हैं, इतिहास बोध और इतिहास दृष्टि का अभाव रहा है, जहां इतिहास लेखन की स्वस्थ और वैज्ञानिक परंपरा का प्रारंभ भी हुआ है, जहां ना इतिहास को प्रासंगिक समझा जाता है ना इतिहासकार को, और इसलिए दोनों को उचित प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, वहां इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने, उसे उपयोगी और प्रासंगिक बनाने या यूं कहे कि इतिहास को इसका उचित और सही स्थान दिलाने के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक शोध प्रणाली, व्यापक सैद्धांतिक तैयारी और सामान्य जन से सहज और जागरूक जुड़ाव के आधार पर जनता का जनता के लिए इतिहास लिखा जाए। 20वीं शताब्दी के प्रमुख इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 1893। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन में पुरातत्व का विशेष योगदान है। इस योगदान के लिए जनरल कनिंगम को याद किया जाता है। वे भारतीय पुरातत्व के पिता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य वस्तुपरक इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व का योगदान यूनान, मिस्र और रोम की प्राचीन संस्कृतियों के उत्खनन में आरंभ हुआ, जहां तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा प्रकाश मिलाने का प्रश्न है, इसे दिशा देकर क्रियान्वित करने का कार्य जनरल कनिंगम ने ही किया। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत ने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन में पुरातत्व को श्रेय दिया जाने लगा। इसलिए कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्हें जब भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण और प्राचीन भवनों की देखरेख का कार्य दिया गया था, तो उसे बड़े ही उत्साह और लगन के साथ इन्होंने संभाला। अपनी कार्य पद्धति के संबंध में कनिंगम ने लिखा है, द एल्डर प्लिनी फॉर द सेक ऑफ क्लियरनेस फॉलो द फूट स्टेप्स ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट, फॉर ए सिमिलर रीजन वुड फॉलो द फूट स्टेप ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हैन ज्वांग। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार एल्डर प्लिनी ने सिकंदर महान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी रचना की, उसी प्रकार मैं चीनी यात्री हैन ज्वांग के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए कार्य करूंगा। इस लगन के साथ कार्य करने के कारण सन 1863 ईस्वी में भारत ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सन 1837 ईस्वी में कनिंगम महोदय सारनाथ गए, उन्होंने यहाँ का उत्खनन कराया। इसके बाद कश्मीर और लद्दाख के मंदिरों पर उन्होंने लेख लिखा। 1850 में सांची का उत्खनन कराया तथा एक पुस्तक की रचना की। भारत के विभिन्न भागों की यात्रा करके कनिंगम ने उसका विस्तृत विवरण भी तैयार किया। उन्होंने बोधगया, बिहार, बारवर गुहा, कालसी, मथुरा, संकिसा, यूसुफ जई, तक्षशिला, मने पियाला, थानेश्वर, सिंध आदि प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष के रूप में उनके एक कार्य विशेष सराहनीय है। कनिंगम की पुरातात्विक दृष्टि। अपने सहयोगियों को कनिंगम समय समय पर विशेष निर्देश भी दिया करते थे। उनका निर्देश इस प्रकार का होता था, उन्होंने एक स्थान पर कहा, आर्कियोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू ब्रोकन स्कल्पचर, ओल्ड बिल्डिंग एंड माउंड्स ऑफ रियून्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट बिलोंग्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, आवर रिसर्चेस शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल एंशिएंट रिमेन, व्हाट एवर दैट विल हेल्प टू इलस्ट्रेट द मैनर्स एंड कस्टमी ऑफ फार्मर टाइम्स। जिसका तात्पर्य है कि पुरातत्व के टूटी हुई मूर्तियां पुराने भवनों तथा ध्वंसावशेषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास से संबंध सभी वस्तुओं को अपनी सीमा में समेटता है। हमारे शोध का विषय यह होना चाहिए जो अतीत के व्यवहारों प्रथाओं को उद्घाटित करने में सहायक है। प्राचीन पुरावशेषों की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनकी वास्तविक स्थिति का अंकन और विवरण का सही संदर्भ में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। कनिंगम महोदय के उक्त निर्देश से पता चलता है कि उनकी दृष्टि पुरातत्व के संबंध में काफी व्यापक और वास्तविक थी। वे चाहते थे कि उत्खनन से भी जो भी अवशेष प्राप्त हो उन्हें हम विश्व इतिहास के संदर्भ में प्रस्तुत कर सके। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्राप्त पुरावशेष प्राचीन भारतीयों के जीवन तथा प्रथाओं का किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही इसी दृष्टि से हमको उनकी व्याख्या भी करनी चाहिए। अनेक इस प्रकार के प्राचीन अवशेष हैं जो इतने दिनों के बाद आज भी भारतीय जीवन में प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि अनेक ऐसे भारतीय भवनों की निर्माण पद्धति, सिंचाई आदि के तरीके और औजार आज भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस प्रकार से प्राचीन काल की जीवन पद्धति तथा प्रयोग में लाए जाने वाले सामानों का ज्ञान हमको प्राचीन अवशेषों से प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास की संरचना में कनिंगम का योगदान। भारतीय इतिहास की रचना वास्तव में कनिंगम महोदय का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। ऐसे प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर एक, वे भारतीय पुरातत्व के जनक थे और उनके पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा विवरण उनकी अमर कृतियां हैं। इससे भारतीय इतिहास लेखकों का मार्गदर्शन होता है तथा उन्हें दिशा मिलती है। नंबर 2, सन 1873 में उन्होंने पंजाब के अनेक स्थलों से इंडो ग्रीक मूर्तियों का संग्रह किया था जो भारतीय कला में गांधार कला के रूप में विख्यात है। सन 1873 और 1877 के बीच देश की सर्वेक्षण यात्रा में बृहत स्तूप अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित अनेक अज्ञात पुरावशेषों को कनिंगम ने उद्घाटित किया। इससे अशोक और मौर्य काल के इतिहास के लिए पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए। नंबर 4, उन्होंने गुप्त एवं उत्तर गुप्त वस्तु संरचना के अनेक पुरावशेष प्राप्त किए जो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। नंबर 5, 1878-1879, उन्होंने तक्षशिला से पूर्व सिकंदर कालीन भारतीय मुद्राओं की ढेरी प्राप्त की। इससे भारतीय मुद्रा शास्त्र के लेख में उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बंगाल की यात्रा में पालवंशी नरेश धर्मपाल का तिथि युक्त अभिलेख उन्होंने ही प्राप्त किया जो उस नरेश की राज्यारोहण तिथि की समस्या को हल करने में सहायक है। नंबर 7, 1880-81 में बोधगया मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया। इससे चीनी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरणों की पुष्टि होती है। उन्होंने संगल, तक्षशिला, संकिया, श्रावस्ती, कौशाम्बी का सर्वेक्षण करके नवीनतम पुरातात्विक प्रमाणों को प्रस्तुत किया। नंबर 8, अशोक के अभिलेख और स्तंभ का उद्घाटन कनिंगम महोदय के ही द्वारा हुआ। गुप्त वास्तु विन्यास का उद्घाटन सिगवा, बिलसड, मित्रगांव तथा देवगढ़ आदि स्थानों से किया और गुप्त शासकों के अभिलेख एरड, उदयगिरी तथा अन्य स्थानों से प्राप्त किया। नंबर 9, जनरल कनिंगम महोदय ने हड़प्पा के प्राचीन क्षेत्र से विशेष रूप से प्रस्तर उपकरणों को प्राप्त किया जो लकड़ी या चमड़े के खुरचने के काम में आते थे। यहाँ के उत्खनन से उन्होंने मृद भांड भी प्राप्त किए। हड़प्पा से कनिंगम महोदय ने जो वस्तुएं पुष्ट की हैं उनमें एक मुहर भी थी। इसमें कुकद विहीन विषभ उत्कीर्ण है तथा लेख भी अंकित है। यद्यपि इस लेख का ज्ञान कनिंगम महोदय नहीं प्राप्त कर सके तथापि उस पर उन्होंने यह कहा कि ये अक्षर भारतीय नहीं है। उनका यह भी कहना था कि यह सील भारत की नहीं है बल्कि किसी विदेश के स्थान से भारत में आ गई थी। नंबर 10, कनिंगम महोदय का योगदान भारतीय अभिलेखों के क्षेत्र में भी विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अनेक अभिलेखों को प्राप्त करके उन सब का उद्घाटन और विश्लेषण भी किया। वे भारतीय अभिलेखों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना चाहते थे। इसके लिए एक अलग विभाग स्थापित करने के ध्येय से अक्टूबर 1881 में सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा था। इस प्रस्ताव की स्वीकृति होने के पूर्व कनिंगम ने अपने वेतन से 500 रुपए प्रति माह जो एक प्लेट को देने लग गए। कालांतर में कनिंगम के प्रस्ताव को सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो गई। 17 जनवरी 1883 से फ्लीट महोदय सरकारी अभिलेखाधिकारी नियुक्त हो गए। नंबर 11 कनिंगम द्वारा परवर्तित कारपास का द्वितीय खंड 1883 में गुप्त अभिलेख के रूप में श्री फ्लीट महोदय ने प्रस्तुत किया। नंबर 12 प्राचीन भवनों के संरक्षण के क्षेत्र में भी कनिंगम के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रयास से 1878 में एक एक्ट बना। प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिए गए कि वे भवनों स्थलों और पुरावशेषों के संरक्षण का कार्य करें। 1 अक्टूबर 1865 ईस्वी में कनिंगम सेवानिवृत्त हो गए। इस प्रकार से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, मुद्रा, अभिलेख, कला भवन, वास्तु, भूगोल, कालगणना आदि अनेक क्षेत्रों में भारतीय इतिहास को इनकी देनों के लिए, उनकी उदार भावना और इतिहास के लिए उनके समर्पण के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा। भारतीय इतिहास के लिए उन्होंने जो स्रोत प्रदान किए हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2 केपी जायसवाल। इतिहास के क्षेत्र में जायसवाल का योगदान। राजनीति से पृथक होने के बाद जायसवाल ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्य करना प्रारंभ किया। उनके कार्यों का लेखा जोखा करने पर इतिहास में उनके योगदान को निम्न अंकित कार्यों के रूप में देख सकते हैं। नंबर 1 1914 में उन्होंने अशासकीय संगठन बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। 1915 में जनरल ऑफ द बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके संपादक वे स्वयं थे। यह पत्रिका भारत और विदेशों में बड़े आदर के साथ देखी जाती थी। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे इस पत्रिका से जुड़े रहे। नंबर 2 पटना संग्रहालय की स्थापना में जायसवाल का योगदान स्मरणीय है। वे इनकी समिति के सदस्य और अध्यक्ष रहे। 1924 में बोध गया मंदिर की जांच समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा की ओर से वे सदस्य नियुक्त किए गए। नंबर 3 उनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय विधाओं की खोज करना था। सन 1911 से 1913 तक उन्होंने कल्चरल वीकली नोट में हिंदू विधि पर शोध प्रबंध लिखा, जिसकी प्रशंसा कोलहा तथा बर्लिन विश्वविद्यालय के न्यायशास्त्र के प्रोफेसर ने कहा था, मार्क्ड ए न्यू स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन लॉ। इस निबंध से प्रभावित होकर इनको व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉक्टर जायसवाल ने मनु और याज्ञवल्क पर 12 व्याख्यान दिए। नंबर 4 डॉक्टर जायसवाल की रुचि संविधान और विधि की प्राचीन विधि की प्राचीनता की खोज में ना होकर भारतीय इतिहास और संस्कृति की जटिल समस्याओं के खोजने की ओर अधिक थी। नंबर 5 शिशुनाथ और मौर्यन क्रिनोलॉजी एंड द बेस्ट एंड द डेट बुद्धास निर्माण लेख लिखा। द्वितीय भाग में सम्राट बिंदुसार तथा तृतीय भाग में क्रिनोलॉजिकल समरी इन पौराणिक क्रॉनिकल एंड द कलयुग एरा तथा चौथे भाग द बृहद्रथ क्रियोनॉलॉजी सुंगो के इतिहास के संबंध में उन्होंने अपने लेख रिवाइज्ड दैट ऑफ द ब्राह्मिन एम्परर पर सुझाव प्रस्तुत किए। कनिक्स ने जो शख्स संवत चलाया था उसको उन्होंने स्वीकार किया और कंट्रीब्यूशन व हिस्ट्री ऑफ मथुरा शोध निबंध लिखा। बैक्ट्रिया के ग्रीक नरेशों के आक्रमणों को उन्होंने गार्गी संहिता तथा युग पुराण के आधार पर शुंग नरेशों के इतिहास को नवीन दृष्टि से देखा। नंबर 6 उन्होंने शख्स संवत वाहिका समस्या का समाधान कालका चार कथानक के आधार पर किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक राजनीतिक इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें विशेषतः नाग और वाकाटक साम्राज्य काल को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 7 भारत के जिस इतिहास युग को विदेशी लेखकों ने अंधकार युग कहा था उस कालखंड को डॉक्टर जायसवाल ने पुराणों तथा अनेक लेखों मुद्राओं और अन्य शास्त्र स्रोतों के प्रमाण देकर उस युग का राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत किया। उनके इस कार्य से इतिहास को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इन्होंने ऐसा करके इस मत का प्रतिपादन किया कि नागवाकाटक युग के क्रमोत्तर में ही गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। नंबर 8 डॉक्टर जायसवाल का राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में एक अंतिम विशेष योगदान था नेपाल के इतिहास का तृतीय क्रम। 600 बीसी से 880 एडी उनकी और एक महत्व कृति है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी। नंबर 9 अभिलेख में रत्ना खेल का हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे अधिक विवाद का चर्चित विषय रहा। डॉक्टर जायसवाल ने मौर्य समत दिमित की डेमेटियाए से तुलना करने का प्रयास किया है अशोक के अभिलेखों और उसके राज्यारोहण की तिथि, ब्राह्मणी लिपि की उत्पत्ति तथा भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेखों का संपादन, अयोध्या का शुंग अभिलेख, चंद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख आदि का संपादन और तिथि क्रम की व्याख्या करके डॉक्टर जायसवाल ने इतिहास जगत को महान योगदान दिया है। नंबर 10 डॉक्टर जायसवाल का योगदान मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में भी कम नहीं है। पुराण पर मुद्रा पर उनका शोध लेख विशेष महत्व रखता है। उन्होंने पुराणों को एक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। गंगा घाटी से उपलब्ध मुद्राओं का विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया है। सुंगों के इरेजत मुद्राओं और ईसापुर के हिंदू सिक्कों पर उन्होंने लेख लिखे। उन्होंने नाग व काटक के समय के सिक्कों पर भी शोधपूर्ण लेख लिखे हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कुछ आहत मुद्राओं को मौर्य काल से जोड़कर मुद्रा शास्त्रियों के बीच एक क्रांति की लहर पैदा कर दी। नंबर 11 डॉक्टर जायसवाल ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा और उनके संपादन का कार्य भी किया है। भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल में चंडेश्वर द्वारा राजनीति शास्त्र पर लिखी पुस्तक राजनीतिक रत्नाकर का उन्होंने पांडित्यपूर्ण संपादन किया। उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र की टीका और गार्गी संहिता का संपादन किया। इसी प्रकार अनेक संस्कृत ग्रंथ जैसे अर्थार्थ शतक विग्रह व्यधरतनी मंजश्री मूल कल्प आदि का संपादन किया। सन 1934 ईस्वी में इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने गुप्त एवं उत्तर गुप्तकालीन राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रकाशित कराया। प्राचीन भारतीय राजनैतिक विज्ञान पर उन्होंने शोधपूर्ण निबंधों की रचना कर एक बहुत बड़ा काम किया है। डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर ने राजनीति विज्ञान पर एक पुस्तक की भी रचना की थी जो आज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने हिंदू पेंटिंग तथा भौगोलिक परिभाषिक शब्दों का विवरण भी प्रस्तुत किया है। डॉक्टर जायसवाल की ऐतिहासिक दृष्टि और पद्धति। इतिहास लेखन में डॉक्टर जायसवाल ने अधिवक्ता पद्धति को स्वीकार किया है। वे स्वयं प्रश्न करके अपने लिए समस्या का सृजन स्वयं करते थे और सशक्त और दुर्बल पक्षों को सामने रखकर स्वयं ही इनका समाधान भी करते थे। वे विसेंट स्मिथ के प्रश्न करते हैं, उनकी अनुचित मान्यताओं और विचारों का खंडन करने के लिए प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। अपने पक्ष के खंडन में विविध साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं। इतिहास पद्धति में डॉक्टर जायसवाल ने तुलनात्मक पद्धति को स्वीकार किया है। डॉक्टर जायसवाल ने इतिहास की कोई दार्शनिक परिभाषा नहीं दी है, उन्हें हम राष्ट्रीय इतिहासकार कह सकते हैं। उन्हें अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय बपौती पर गर्व था। वे सच्चे देशभक्त थे। राष्ट्रीय गौरव व गरिमा के प्रति उनमें स्वाभिमान था। किसी भी विदेशी सहायता के वे घोर विरोधी थे। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर उन्होंने अपना इतिहास लेखन पूर्ण किया। अपने 25 वर्ष इतिहास लेखन में डॉक्टर जायसवाल ने इतिहास के विरोधी पक्ष पर जो लेखन किया है वह भविष्य के लेखकों और पाठकों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। उन्होंने भारतीय अस्मिता को प्रस्तुत करके राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा दी है। अगर भारत के इतिहास के कलेवर पर विदेशी विद्वानों ने घाव किया था तो डॉक्टर जायसवाल ने अपने इतिहास लेखन के माध्यम से उन घावों को भरने का काम किया था जहां उन्होंने अंधकार देखा था। डॉक्टर जायसवाल ने उस युग और स्थान को प्रकाशित करके छोड़ा। केपी जायसवाल भारतीय इतिहास लेखन में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इतिहास लेखन में आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय लेखकों ने जब यह देखा कि अंग्रेजी ने इतिहास का उपयोग अपना पक्ष मजबूत करने के लिए किया है तो वे भी इतिहास को भारतीय राष्ट्रीय हित में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीयों ने तत्कालीन लाभ के लिए इतिहास लिखना शुरू किया। जिस प्रकार जेम्स मिलने विसेंट स्मिथ तक अंग्रेजी विद्वानों ने भारत में अंग्रेजी राज्य को न्याय संगत सिद्ध करने का प्रयास किया था, उसी प्रकार के भी केपी जायसवाल ने राष्ट्रवादी चेतना को पुष्ट करने में इतिहास का प्रयोग किया तथा भारत का पूर्ण पक्ष लेकर भूरी भूरी प्रशंसा की। जायसवाल ने स्मृति के विचारों को स्वीकार नहीं किया। उदाहरणार्थ उन्होंने लिखा, स्कंद गुप्त में कर्मनिष्ठ हिंदू भारत तरुणों का नेतृत्व किया और संख्या में अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु पर आक्रमण करके पराक्रम और साहस का परिचय दिया। भारतीय गौरव का गुणगान सच्चाई के साथ करने में डॉक्टर जायसवाल आगे हैं। नंबर 3, आरजी भंडारकर। श्री भंडारकर ने बहुत से शोध पत्रों को विशेषीकृत विषयों पर लिखा। उन्होंने तामपत्रों, अभिलेखों तथा पतंजलि के तिथि आदि अनेक विषयों पर शोध पत्रों में लिखा। ये सभी शोध पत्र भारतीय इतिहास में तिथि क्रम निर्धारण में पूर्ण योग देते हैं। इनका वैष्णव विज्म और शैव विज्म ग्रंथ धर्म के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। सन 1905 ईस्वी में फ्री चर्च कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के तत्वावधान में शोध की नवीन दिशाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने धार्मिक इतिहास की ओर भी इंगित किया था। उन्होंने इस दिशा में स्वयं भी अनेक कार्य किए और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडो आर्यन रिसर्च ग्रंथमाला के लिए उक्त ग्रंथों की रचना की। उन्होंने धर्म की तुलना विधि से प्राप्त निष्कर्षों को दृष्टि में रखकर हिंदू धर्म का विकास देखा। इस अंतराल में धर्म के अध्ययन की विधियाँ अनेकशः विकसित हुई और संप्रति धर्म का समाज विकसित हुआ और उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। भंडारकर की कृतियों से जो उनका दृष्टिकोण विकसित हुआ उसे हम निम्नलिखित पुस्तकों में देख सकते हैं। नंबर 1, यद्यपि भंडारकर एक देशभक्त विद्वान थे लेकिन उनकी कृतियों को देखने से कहीं भी पता नहीं लगता कि वे ब्रिटिश विरोधी थे। वे ब्रिटिश संबंधों के समर्थक थे। अपनी संस्कृति के प्रति अगाध मोह रखते हुए भी ब्रिटेन और जर्मनी के प्रति उनमें मोह था। जर्मनी के संस्कृत विद्वानों से उनका संपर्क बना रहता था। नंबर 2, 19वीं शताब्दी के विद्वान राके के विचार से वे सहमत थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा योगदान। इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण निम्नलिखित था। नंबर 1, वे यह मानते थे कि इतिहासकार का काम अतीत के इतिहास का चित्रण करना होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश के समान निर्णय लेना इतिहासकार का कर्तव्य है, उसे निरपेक्ष होने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, अपने देश और जाति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या वह प्रत्यक्षदर्शी बनकर विवरण प्रस्तुत कर रहा है। नंबर 3, ऐतिहासिक खोज में वे यूरोपीय विद्वानों की अपेक्षा स्रोतों के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं। विसेंट स्मिथ जैसे विद्वानों की इसी आधार पर उन्होंने आलोचना की क्योंकि उनके विवरण अधिक दोषपूर्ण हैं। इसका कारण था कि विसेंट ने भारतीय स्रोतों की समीक्षा करके इतिहास नहीं लिखा था। नंबर 4, संस्कृत के महाकाव्यों की समीक्षा तथा पुराणों का अवलोकन, उल्लिखित सातवाहन नरेशों की सूची अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में तथा अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में देखने से यह पता चलता है कि वे तिथि क्रमानुसार अत्यधिक सटीक प्रतीत होते हैं, जिसे कि अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। नंबर 5, बासम महोदय का यह मत है कि भंडारकर यद्यपि एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे तथा प्रार्थना समाज के सुधारों के सदस्य थे, परंतु 20वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहासकारों से भिन्न उन्होंने मानवीय इतिहासकारों की कारणता में दैवी विधान को कभी स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि उनकी ऐतिहासिक दृष्टि सर्वदा निरपेक्ष बनी रही। भाषा के संबंध में उनका मत था कि किसी जाति का निर्णय भाषा करती है तथा उससे उत्पन्न उपभाषाओं के बोलने वाले की संस्कृति में सांस्कृतिक गुण विद्यमान रहते हैं। नंबर 7, भंडारकर का मत है कि इतिहास का अर्थ केवल राजनैतिक इतिहास नहीं बल्कि आधुनिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ और क्षेत्र काफी व्यापक है, जैसे सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास। इन सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करना इतिहासकार का धर्म है। भंडारकर की ऐतिहासिक दृष्टि स्वयं उनके कार्यों, उपलब्धियों और विचारों में विद्यमान है। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के सामने यह प्रश्न था कि व्हाट हैपेंड, परंतु भंडारकर का कहना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि घटना क्यों घटी। उनकी दृष्टि कार्य कारण की थी। कारणों का विवरण देना भी इतिहास का कर्म है। वे इतिहास में दैवीकरण को नहीं मानते। इतिहासकार का व्यक्तित्व इतिहास में आना चाहिए। नंबर 8, भारतीय इतिहास में डॉक्टर भंडारकर का योगदान मौलिक और निष्पक्ष है। संस्कृत और प्राकृत भाषा के मूल स्रोतों के आधार पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का प्रवेश डॉक्टर भंडारकर ने इतिहास में किया है। उन्होंने आधुनिक इतिहासकारों को नया मार्ग दिखाया है। नंबर 9, बाथम के अनुसार रे चौधरी इज ए हिस्टोरियन ऑफ द स्कूल ऑफ भंडारकर अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ड्राई ट्रथ एंड दैट मच सॉलिड वर्क वॉज डन अलोंग द लाइन्स ऑफ भंडारकर टू द नेम ऑफ टू स्कूल राय चौधरी एंड के एन दिलकांता शास्त्री मेंशन्ड बाय बासम अमोंग मेनी वी मेन एट द नेम ऑफ केन मजुमदार निराशी एंड अल्टेकर विदाउट फियर ऑफ कंट्रेडिक्शन। अतः कह सकते हैं कि भंडारकर का योगदान भारतीय इतिहास लेखन में अप्रतिम मार्गदर्शक रहा है। भंडारकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इतिहास जज होता है, वह वकील नहीं होता। जो जाति या देश को मुवक्किल समझकर इतिहास में उसके पक्ष पर तर्क ढूंढे, उसका एकमात्र सर लक्ष्य अतीत के सत्य की तलाश है, जो उसे जागरूक होकर करना चाहिए। भंडारकर के निष्कर्ष जागरूक होते हैं। ऐतिहासिक आदर्श न्यायाधीश का है। उसका दृष्टि व्यापक है, शैली समीक्षात्मक है। भंडारकर की ऐतिहासिक पद्धति। नंबर 1, इतिहासकार अधिवक्ता नहीं न्यायाधीश है। उन्होंने न्यायाधीश की पद्धति को स्वीकार किया। नंबर 2, किसी विषय पर लिखने से पूर्व सभी उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा, साक्ष्यों का मूल्य एवं साक्ष्यों की तुलनात्मक विश्वसनीयता का सभी दृष्टियों से आश्वस्त होने पर ही एक न्यायाधीश की भांति वे लिखते हैं। नंबर 3, उन्होंने अतिवादी विद्वानों की आलोचना की है। डॉक्टर भंडारकर ऐतिहासिक लेखन में निष्पक्षता विधि के लेखक थे। उनका मत था कि साक्ष्य एवं तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालना चाहिए। उन्होंने नंबर 4, उन्होंने लिखा है कि ट्रेडिशन आर नॉट टू बी इंटायरली रिजेक्टेड एंड इंडेवर शुड बी मेड टू एज ए सर्टेन देयर एंटीक्विटी एज देयर सर्ट एंड एज देयर क्रेडिबिलिटी बी कंसिडर्ड प्रोपोर्शनेट टू इट एंड इफ दे आर इन themselves probable and stand all critical test, they may provisionally accepted. इस प्रकार वे कह सकते हैं कि भंडारकर ने जो पद प्रशस्त किया, उस पर उनके बाद के लेखक चलने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 4, आरसी मजुमदार। इतिहास लेखन और दृष्टिकोण। डॉक्टर मजुमदार ने इतिहास लेखन पर जो भाष्य दिए हैं, वे हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुए। उन्होंने इन व्याख्यानों में केवल इतिहास लेखन के विकासात्मक पक्षों को नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि इतिहास के संबंध में लिखा है कि हिस्ट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एज एन इंटरवल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, दिस इज फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अर्थात इतिहास का संबंध आंतरिक सत्य के प्रति जिज्ञासा है। सत्य की खोज ही इतिहास है। डॉक्टर मजुमदार का कहना है कि मेरी दृष्टि सत्य केवल सत्य और पूर्ण सत्य ही इतिहास का ढांचा होना चाहिए, जिसके आधार पर विभिन्न विन्यास खड़े किए जा सकते हैं। उनके कहने का आशय है कि इतिहास का अर्थ उपयोगिता, उद्देश्य और आदर्श का सत्यान्वेषण है। नंबर 3, डॉक्टर मजुमदार का कहना है कि आधुनिक काल में हम ऐतिहासिक सत्यान्वेषण की दृष्टि से भटक रहे हैं। शासन की ओर से एक निश्चित राजनीतिक आदर्श के रूप में इतिहास लेखन को प्रेरित किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता के बाद शासन द्वारा महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन पर आधारित इतिहास लेखन को प्रेरित किया जा रहा है, परंतु इस भारतीय इतिहास के संघर्षों और स्वतंत्रता संग्राम की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राचीन भारत में भी अश्वमेध यज्ञ, युग विजय और समरसत विजयी को अहिंसा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भारत में इतिहास लेखन वास्तव में एक समस्या है। कोई भी व्यवस्था जैसे इतिहास लिखवाना चाहती है, वह सर्वथा ही उसके हित साधन में सहायक होता है। भारत का बुद्धिजीवी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता का इतिहास लिखने की ललक स्वाभाविक थी, लेकिन सरकार उसे लिखवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। किताबें लिखवाई गई और यह विवाद की 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का था अथवा नहीं, यदि था तो किस सीमा तक इतिहासकारों के बीच स्वतंत्र चर्चित होने के स्थान पर सरकारी नीति का ध्यान रखकर किया जाने लगा। मजुमदार का कहना है कि इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे जो तथ्य 1857 को स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध करे वही एकत्र किए जाए। सरकार ने एक विस्तृत इतिहास लिखवाने की जिम्मेदारी ले ली है और यह कार्य ताराचंद को सौंप दिया गया। यहीं से एक विवाद खड़ा हो गया जिसमें भारत के दो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद और रमेश चंद्र मजुमदार उलझ गए। दोनों ही अलग अलग इतिहास की रचना की, पर उनका विवाद इतना चर्चित हो गया था कि उनकी पुस्तकें भी निर्विवाद नहीं रह सकी और उस पर जो धन व्यय हुआ उतनी प्रतिष्ठा उनको नहीं मिली। इतिहास में महत्व और योगदान। मजुमदार एक भारतीय लेखक हैं, उनको भारतीय गौरव से अपार अनुराग है। इसके लिए उन्होंने भारतीय इतिहासकार के दायित्व का निर्वाह भी किया। ऐतिहासिक न्याय का उन्होंने सदा स्मरण रखा। उन्होंने कहा कि इतिहास को सही न्याय करना चाहिए, जिससे जनता के सामने वह अपने समय की सही तस्वीर खींच सके, साथ ही साथ भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। नंबर दो, उनका प्राचीन भारतीय गंभीर अध्ययन उनकी रचनाओं के द्वारा प्राचीन भारतीय गौरव को समुज्ज्वल करने में पूर्ण सक्षम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई भी हिंदू, मुसलमान या अंग्रेज भारतवर्ष का वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। इतिहास में किसी भी राजनीतिक या मानवतावादी धारणा के कारण पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। नंबर तीन, डॉक्टर मजुमदार एक राष्ट्रीय इतिहासकार थे, जिन्होंने स्मिथ और जायसवाल तथा उनके अनुयायियों की आलोचना की। वे अतिवाद को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने इतिहासकारों को भी आलोचना की जिन्होंने भारत की प्राचीनता को अत्यधिक गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। नंबर चार, उनकी पुस्तक द हिस्टोरी एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल एक स्वस्थ राष्ट्रीयता को प्रशस्त कर सकती है। वे प्राचीन परंपरा के इतिहासकारों की दृष्टि रखते हैं, लेकिन ब्रिटिश राज के 50 वर्षों तथा स्वतंत्रता भारत के एक दशक तक के इतिहास को देखे तो ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहासकार वस्तुनिष्ठता से कुछ दूर जाकर राजनीतिक नीतियों और सिद्धांतों की ओर उन्मुख हो रहा है और शासन भी इतिहासकारों को पद और प्रतिष्ठा से सम्मानित कर रहा है। इस बात को डॉक्टर मजुमदार भारतीय इतिहास लेखन के लिए शुभ लक्षण नहीं मानते। नंबर पाँच, अंत में कह सकते हैं कि डॉक्टर मजुमदार की सेवाओं और इतिहास लेखन को भारतीय इतिहास के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अपनी मौलिक प्रतिभा से उन्होंने विद्या भवन के माध्यम से इतिहास लेखन को एक स्वरूप दिशा प्रदान की। इस प्रकार उनकी निष्पक्ष राष्ट्रीय अस्तित्व है। नंबर पाँच, डॉक्टर अलतेकर, A.S. अलतेकर। डॉक्टर अलतेकर की ऐतिहासिक दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और विवेचनात्मक है। इतिहास के जिन बिंदुओं को आपने स्पष्ट किया, उसकी खोज में अतीत भारत के साहित्य सागर को पथ कर परमाणु की खोज की। पुरातत्व अवशेषों, अभिलेखों आदि साधनों का सहारा लेकर इन तथ्यों का विवेचन किया और वास्तविक सत्य को निकाल कर ही छोड़ा। डॉक्टर अलतेकर की इतिहास दृष्टि वैज्ञानिक थी। उनका दृष्टिकोण व्यापक था। उनका कहना था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रस्तुत करना इतिहासकार का दायित्व है। डॉक्टर अलतेकर की इतिहास दृष्टि स्वयं उनके कार्यों, उपलब्धियों और विचारों का मूल्यांकन करती है। भारतीय इतिहास को डॉक्टर अलसेकर का योगदान मौलिक एवं निष्पक्ष है। संस्कृत प्राकृतिक और पाली भाषा के मूल स्रोतों के आधार पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना आपने महत्व दिया। इनके साहित्य के अगाध सागर में गोते लगाकर आपने तथ्यों के मोतियों की खोज की। आप इतिहासकारों को मार्गदर्शन कराने वाले इतिहास लेखक रहे हैं। नंबर 6, डीडी कौशाम्बी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा इतिहास की व्याख्या। कौशाम्बी ने अपने इतिहास में यद्यपि मार्क्स, एंगल्स और स्टालिन को उद्धृत किया है, परंतु वे स्टालिन से सहमत नहीं थे। मार्क्स एंगल्स के भौतिकवादी ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकार करते हुए भी अपने नवीन भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। फिर भी कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की जटिल प्रक्रियाओं और परिप्रेक्ष्यों में एक इतिहासकार के रूप में कौशाम्बी की व्याख्या मार्क्सवादी थी। मार्क्सवादी व्याख्या में कौशाम्बी मार्क्स और इंग्लिश के कठोर ढांचे में डांगे और हुसैनी की भांति अपने को बाधा नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास इस मार्क्सवादी ढांचे में ठीक नहीं बैठता, फिर भी वे मार्क्सवादी इतिहासकार थे। इतिहासकार के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि उत्पादन के संसाधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तन की तिथि क्रमानुसार प्रस्तुति ही इतिहास है। किसी प्रकार का व्यक्तिगत उपाख्यान एवं प्रशस्तियां मात्र एक भारतीय रेलवे टाइम टेबल अथवा स्वच्छंदतावादी उपन्यास की भांति नहीं है और ना तो इतिहास की इस प्रकार की व्याख्या ही ठीक है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन राजा था अथवा किस क्षेत्र का शासक था, बल्कि इससे महत्वपूर्ण यह है कि किसी क्षेत्र में रहने वाली जनता के द्वारा किस प्रकार के हल का प्रयोग किया जाता था। शासन के परिवर्तनों का अध्ययन इस दृष्टि से आवश्यक है कि वे उत्पादन के आधारों में शक्तिशाली परिवर्तनों को कितनी गति प्रदान कर सके है। ऐतिहासिक अध्ययन की एक दृष्टि होनी चाहिए कि सांस्कृतिक महत्वपूर्ण जनता के जीवन मार्ग का स्तर है, यह केवल बौद्धिक और आध्यात्मिक मूल्यों की व्याख्या नहीं है। भारतीय इतिहास का काल निर्धारण कौशाम्बी की दृष्टि में। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास का काल निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया है। नंबर 1, नगरीय स्थिर सिंधु घाटी संस्कृति 3000 से 1500 बीसी। नंबर 2, आर्यकरण उत्तरकालीन काश्य तथा प्रारंभिक लौह युग किसी पशुचारण संगठन की द्विजाति पद्धति का चार जातियों में विकास 800 बीसी। नंबर 3, गंगा घाटी के घनों जंगलों को श्रम करके साफ करना तथा आवास स्थापित करना मगध साम्राज्य के उद्भव तक 500 से 250 बीसी। नंबर 4, आदिम प्रकार का सामंतवाद 400 एडी से पूर्व। नंबर 5, उत्तरकालीन गुप्त में विशुद्ध साम्यवाद का प्रारंभ और मुस्लिम व्यापार तथा सेना का प्रवेश 1200 एडी के बाद। यह काल विभाजन मार्क्सवादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में है। इससे यद्यपि वैज्ञानिक माना गया है, लेकिन किसी संस्कृति के विज्ञान के विकास अनेक आधार पर प्रेरणाएं होती हैं और इसे इस ओर कौशाम्बी का ध्यान नहीं गया। इतिहास पद्धति। भारतीय इतिहास की लिखित सामग्रियों का अभाव है। जो कुछ विवरण प्राप्त भी होते हैं वे धार्मिक और कर्मकांडी विवरणों से इतने भरे पड़े हैं कि उनसे इतिहास की सामग्री निकाल पाना कठिन है, अतः हम वास्तविक इतिहास की रचना नहीं कर पाते हैं। कौशाम्बी का कहना है कि वास्तविक ज्ञान पुरातत्व और नृतत्व विज्ञान से ही मिल सकती है। इसकी सहायता से इतिहासकार त्रुटियों से बच सकता है। इतिहास लेखक को इन स्रोतों में इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा कि उस समय की जनता की जीवन कैसा था और वे किन चीजों का प्रयोग करते थे। नृतत्व विज्ञान पर उन्होंने काफी बल दिया है। वे लिखित विवरणों का समीकरण पुरातत्व अवशेषों से करने के पक्ष में है। उन्होंने अपनी समन्वित पद्धति को वैज्ञानिक आधार पर विकसित किया है। वे गणित और विज्ञान के अध्येता थे, इसलिए इतिहास के लिए इस समन्वित वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने अपनाया। ऐतिहासिक अध्ययन की जिस पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया उसमें माइक्रोलिथ, मेगालिय, पुरातत्व, नृतत्व विज्ञान के बहुत वस्तुगत साक्ष्यों के साथ ही मुद्राओं को भी स्वीकार किया गया। आहत मुद्रा पर उन्होंने विशेष विशेष उल्लेखनीय आहत मुद्राओं पर उनका विशेष अध्ययन था। उन्होंने मुद्राओं का परीक्षण विश्लेषण और व्याख्या की है। उनका कहना है कि प्रत्येक मुद्रा पर अपने समाज का हस्ताक्षर है। उन्होंने बौद्ध पाली साहित्य में उल्लिखित राजाओं की सूची तथा आहत मुद्राओं के चिन्हों के आधार पर दोनों के मुख्य संबंध स्थापित किया है। मुद्राओं के अध्ययन में उन्होंने गणित के सांख्यिकी पद्धति का अनुसरण किया है। मुद्राओं के अध्ययन के लिए उन्होंने एक नई मौलिक दिशा दी है, भौतिकवादी व्याख्या। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत किया है। सैंधव सभ्यता को नगरीय विकास की प्रथम अवस्था उन्होंने ही इसलिए पसंद किए। खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था इसी कारण विकसित हुई। नदियों के किनारे की भूमि उपजाऊ थी और जंगलों को काटकर उपजाऊ बनाया जा सकता था। सिंधु घाटी में केवल दो नगर विकसित हुए क्योंकि यही लोगों की काफी सुविधाएं प्राप्त थी। कौशाम्बी मानते हैं कि आर्य बाहर से आए और सिंधु सभ्यता के नगरों का विध्वंस उन्होंने ही किया। वे घुमक्कड़ पशुचारक ग्रामीण थे। बाद में उन्होंने लोहे और हल का प्रयोग किया और जंगलों को साफ करते हुए पूरब की ओर बढ़ते गए। लौह प्रविधि में श्रेष्ठता के कारण वे आगे निकल गए। प्राचीन भारत की दासता के संबंध में उनका मत है कि दासता का शुभारंभ शूद्र जाति के अस्तित्व में आने के कारण हुआ। दास गृह के रूप में थे, वे पशुओं की तरह खरीदे और बेचे नहीं जाते थे। प्राचीन भारत में वर्ग पद्धति का आधार क्षत्रिय शूद्र व्यवस्था की दासता नहीं है। उनका कहना है कि भारत में यूरोप के समान दासता नहीं थी। भारत में शूद्र व्यक्ति संपत्ति ना होकर संपूर्ण समुदाय में सेवक के रूप में थे। आगे वे कृषि से संबंध हो गए। उत्तर वैदिक काल की जाति व्यवस्था के संबंध में उनका कहना है कि ब्राह्मणों के बढ़ते कर्मकांडी धर्म का प्रभाव बढ़ता गया। इसी समय आर्य किसी की ओर आगे बढ़े और धातु के प्रयोग के कारण इनकी कुशलता और बढ़ी। वे भारत में लौह परंपरा को 800 से 700 बीसी में मानते हैं, लेकिन नवीन शोधों के आधार पर कौशाम्बी का मत अमान्य हो गया है। कृषि प्रधान समाज ने ट्राइबल समाज की मान्यताओं को अमान्य कर दिया। बौद्ध जैन धर्म के उपदेशों ने समाज को तोड़ दिया। नए सिद्धांत और दर्शन सामने आए। जाति पाति के बंधन ढीले पड़ गए। कर्म कांडों की जटिलता ढीली पड़ गई। इस धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। अब एक विस्तृत राज्य की इच्छा जागी। मगध साम्राज्य इसका उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य के विकास का कारण पंजाब के कबीलों की सिकंदर द्वारा समाप्ति और कौटिल्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का मुद्रा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन की अधिकता और वेतन भोगी कर्मचारी व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था आदि एक सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में मौर्यों को प्रतिस्थापित किया। अशोक एक उदार शासक था, लेकिन उसने अपने प्रशासकीय सुधारों द्वारा नए पदों का सृजन और धर्म महामात्यों के द्वारा अधिकारियों पर नियंत्रण का जाल बिछा दिया। योगदान। इस प्रकार कौशाम्बी ने पूरे इतिहास को अपनी दृष्टि से देखकर मौलिक वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक पूंजीवादी काल तक जो नई दृष्टि इतिहास लेखन को दिया वह अद्वितीय है। वे न कहीं प्रतिबद्ध रहे और न कहीं पक्षपात किया। वे समाज का निर्णायक तो उत्पादन को मानते हैं। उन्होंने इतिहास में एक मानदंड स्थापित किया। उनकी बात परंपराओं की इतनी विरुद्ध थी कि अन्य इतिहासकार इनसे कूढ़ हो गए। मजुमदार ने तो उन पर अल्प ज्ञान और अनाधिकार चेष्टा का आरोप भी लगाया, जो आगे चलकर खोखला और निराधार सिद्ध हुआ। आगे चलकर इतिहासकारों ने उनकी सच्चाई को स्वीकार किया। इस प्रकार कौशाम्बी की अपनी एक अलग परंपरा विकसित हो रही है। प्रतिकूल स्थितियों और व्यवस्था के प्रत्यक्ष परोक्ष दबावों के होते हुए भी वही आज भारतीय इतिहास लेखन में सबसे अधिक स्वीकार किए जाने लगे हैं। उन्हीं की धारा में आज सभी अवगाहन करना चाह रहे हैं। उनकी रचनाओं में उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। नंबर 7, एके कुमार स्वामी। परंपरा का विचार। आनंद कुमार स्वामी का मत है कि इस जगत में एक ही पुराण विज्ञान, एक ही मूर्ति विज्ञान और सत्य भी एक ही है, जो अपरुषेय बुद्धि के द्वारा अज्ञात काल से हस्तांतरित होता चला आ रहा है। परंपरागत अपने संश्लिष्ट रूप से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण अर्थ को व्यंजित करता है। परंपरागत अपनी व्यंजना के साथ सांस्कृतिक और आत्मिक चिंतनों से परिपूर्ण दृष्टि है, जिसका विरोधी शब्द मॉडर्न है। परंपरागत शब्द विश्व के सभी प्राचीन मान्यताओं और संस्कृतियों में एक विचार, एक सामाजिक सुधार, एक व्यवहार की सभ्यता को समेटे हुए है। मॉडर्न वैज्ञानिक युग का शब्द है, जो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान का विश्वासी है। कुमार स्वामी का कहना है कि परंपरा विश्वासों से पूर्ण शब्द है, जो एक निश्चित सत्य, निश्चित प्रक्रिया, कलाकृतियां, सिद्धांत और नियम को व्यवंजित करता है। यह मॉडर्न शब्द से भिन्न भी है। हम लोग जिस आधुनिकता में जी रहे हैं, वह हमारी परंपरा से भिन्न है। आधुनिक और आधुनिकता 20वीं शताब्दी की देन है, जो परंपरा से भिन्न है। आवश्यक है कि हम इन दोनों में समन्वय स्थापित करें। कुमार स्वामी की दृष्टि। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी दृष्टि और कृतियों को वैज्ञानिक आदान प्रदान किया। प्राचीन भारतीय साहित्य, कला, स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, औद्योगिक उत्पादकों के कलात्मक स्वरूप को उन्होंने एक नवीन दृष्टि दी। लोगों में नवीन दृष्टिकोण पैदा किया। उन्होंने प्राचीन विश्वासों और संबंधों का चित्रात्मक स्वरूप देकर उनकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। प्राचीन शब्दों को उन्होंने स्वरूप दिया और रूपों को शब्द प्रदान किया। भारतीय संस्कृति तथा कला में निहित आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नवीन वैज्ञानिक विधा के रूप में दर्शाया। भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति में उन्होंने सबको बताया, गुढ़ बातों का परिचय कराया। विश्व को उन्होंने भारतीय आत्मा का बोध कराया। बुद्धिजीवियों के विचारों में उन्होंने क्रांति की लहर पैदा कर दी। उन्होंने भारतीय कला, इतिहास, संस्कृति, दर्शन और मिथक, प्रतीक, पुराण विज्ञान और मूर्ति विज्ञान को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजपूत पेंटिंग के प्रभाव पर भ्रमों का निवारण किया, उसके वस्तुगत पक्ष को उजागर किया। उनके जीवन का अधिक समय विदेशों में व्यतीत हुआ। उन्होंने विदेशियों के समकालीन और पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन किया। भारतीय और सिंहली जीवन परंपरा और व्यवहार को ऐतिहासिक संदर्भ में ढालकर इतिहास लेखन को उन्होंने नई दिशा दी। कुमार स्वामी ने अपनी कृतियों के माध्यम से सभी को नए जागरण का संदेश दिया। उन्होंने भारत के महान कलाकारों से संपर्क करके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। कुमार स्वामी एक सेतु थे। उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से भारत को विदेशों के साथ जोड़ने का काम किया। वे विश्व मैत्री के प्रतीक थे। उन्होंने भारतीय कला के उद्देश्य, आदर्श और प्रयोजन की जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह विदेशी विद्वानों के लिए एक नई बात थी। भारत के कलात्मक रहस्यों से उन्होंने विश्व को परिचित कराया। उनकी महान इतिहास दृष्टि और दिशा इंगित से हम उनके ऋणी हैं। ईएचकार, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहासकार के उद्देश्य की चर्चा करते हुए रैके ने कहा था, इतिहास का काम है जो कुछ जैसा है उसको ठीक वैसा ही दिखा देना। इस सूक्ति ने परवर्ती इतिहासकारों की पीढ़ियों को वस्तुनिष्ठता के आग्रह से अभिभूत कर दिया। लेकिन इतिहास का वह जो कुछ समुचित कैसा था, सचमुच कैसा था, इसका निर्णय कौन करेगा? प्रोफेसर कार ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास के तत्व आम तौर पर वे तत्व हैं जिन्हें इतिहासकारों ने विवेचना के लिए चुना है। लाखों लोगों ने रुबिकान नदी को पार किया था, लेकिन इतिहासकार हमें विश्वास दिलाता है कि केवल सीजर का रुबिकान नदी के पार जाना महत्वपूर्ण था। वस्तुतः ऐतिहासिक तथ्य जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, वह अपने युग के मूल्यों से प्रभावित इतिहासकार द्वारा असीमित व्याख्या के लिए किए गए चुनाव का ही प्रतिफल होते हैं, भले ही पूर्ण वस्तुनिष्ठता असंभव हो। इतिहासकार की भूमिका ना तो कम होती है और ना इतिहास का सम्मोहन कम होता है। ये विचार प्रोफेसर कार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री में व्यक्त किया है। इस प्रकार प्रोफेसर कार केवल आधुनिक इतिहासकार ही नहीं, बल्कि इतिहास दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार भी हैं। अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री की भूमिका में डॉक्टर कार ने अपने दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए लिखा है, अतीत का कोई भी सार्थक अध्ययन निश्चित रूप से भविष्य की अंतर्दृष्टि द्वारा प्रेरित और आलोकित होगा, और यह भी आज जबकि विश्व का प्रत्येक देश कठिन आर्थिक सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। समय के विस्तार में मानव जाति की प्रगति की प्रक्रिया पर ही इतिहास की अवधारणा की जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण विरोधाभास से ग्रस्त लग सकता है, मगर यह विश्वास है कि यदि हम अतीत का गंभीर और विचारपूर्ण अध्ययन करें तो इतिहास हमें आश्वस्त कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। वह हमें भविष्य के प्रति आसान्वित कर सकता है कि हम ऐसे समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें जब मानव जाति अपेक्षाकृत अस्थायी सामाजिक व्यवस्था की दिशा में नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर कूच करेगी और सभ्यता के विकास में गैर यूरोपीय जन यूरोपियों के कंधे से कंधा मिलाकर समकक्ष भूमिका निभाएंगे। इतिहास का अर्थ कार का ऐतिहासिक दार्शनिक दृष्टिकोण। इतिहास का अर्थकार का ऐतिहासिक दार्शनिक दृष्टिकोण। वास्तव में इतिहास क्या है, इसके प्रतिकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है। नंबर एक, वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान अतीत के बीच अंतर्वर्त परिसंवाद है। नंबर दो, ऐतिहासिक तथ्य पुस्तकों पांडुलिपियों अभिलेखों शिलालेखों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ऐतिहासिक तथ्य मछली बेचने वाली की पट्टी पर विभिन्न प्रकार की मछलियों की भांति होते हैं। इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार मछली खरीदकर अपने घर ले जाता है, अपनी इच्छा अनुसार उसे पकाकर रसा स्वादन करता है। स्पष्ट है कि इतिहासकार द्वारा चयन किया हुआ तथा ऐतिहासिक तथ्य होता है, तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। नंबर तीन, तथ्य और इतिहासकार के संबंध में कार का कहना है कि तथ्य और इतिहासकार एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं। तथ्यों से विहीन इतिहासकार व्यर्थ है और बिना जड़ का होता है। इतिहासकार के अभाव में ऐतिहासिक तथ्य निर्जीव तथा अर्थहीन होता है। दोनों का संबंध अभिन्न है, मछली और पानी का है। उन दोनों का संबंध इतना घनिष्ठ है जितना मनुष्य और वातावरण। कार का कहना है कि तथ्य रूपी गुठली से ज्यादा महत्वपूर्ण भाग बाहरी गुदा होता है। वस्तुतः इतिहास इतिहासकार और तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। यह अगोचर और एकाकी व्यक्तियों के बीच होने बीच संवाद नहीं बल्कि वर्तमान कालिक समाज और अंतरकालिक समाज के बीच होने वाला संवाद है। मनुष्य को अतिकालीन अतीतकालिक समाज को समझने योग्य बनाना तथा वर्तमान कालिक समाज के ऊपर नियंत्रण की वृद्धि करना इतिहास का द्वितीय कर्तव्य होता है। नंबर चार, इतिहासकारों को समानीकरण के सिद्धांत से अलग करना उपहास्यास्पद एवं मूर्खतापूर्ण बात है। इतिहास समानीकरण पर आश्रित और विकसित होता है। ईएच कार ने स्वीकार किया कि इतिहास का संबंध विशेष तथा समान दोनों से होता है। नंबर पाँच, कुछ विद्वानों की धारणा है कि वैज्ञानिक भविष्यवक्ता होता है और इतिहासकार भावी घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करने में असमर्थ होता है। कार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। इतिहासकार द्वारा अतीत के अध्ययन का तात्पर्य यह नहीं कि वह वर्तमान पर प्रकाश डाले अथवा भविष्यवाणी कर सके। उसे भविष्यवाणी वक्ता के रूप में देखना तथा उससे भविष्यवाणी की अपेक्षा करना एक बहुत बड़ी भूल कही जा सकती है। नंबर छह, क्या इतिहास एक कला है? इस संबंध में इचकार का कहना है कि यदि इतिहासकार में एक कलाकार की भांति चयनता का गुण नहीं है तो वह सफल इतिहासकार नहीं हो सकता। एक कलाकार की विशेषता यह है कि वह अनावश्यक तथ्यों का परित्याग करता है तथा अनावश्यक तथ्यों को यथाचित स्थान देता है। इतिहासकार में भी ऐसे गुणों की अपेक्षा की जाती है। नंबर सात, इतिहास में वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग के संबंध में कार का कहना है कि इतिहास को सामान्यीकरण के सिद्धांत से अलग करना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है। इतिहास सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होकर विकसित होता है। नंबर आठ, इतिहासकार के कौशल संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण के संबंध में प्रोफेसर कार ने अपना अभिमत देते हुए कहा है कि इतिहास के अध्ययन का अभिप्राय कारणों का अध्ययन होता है। अतीतकालीन घटनाएं कुछ कारणों का परिणाम होती है। कार्यकारण का स्पष्ट करना ही इतिहासकार का कौशल है। नंबर नौ, इतिहास में पक्षपात पर विचार करते हुए प्रोफेसर कार ने अपना मत देते हुए कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य मछली बेचने वाले की शिला पट्टी पर विभिन्न मछलियों की तरह है। इतिहासकार मछली रूपी ऐतिहासिक तथ्य अपनी रुचि के अनुसार खरीदता है, उन्हें घर लाकर अपनी इच्छा अनुसार व्याख्या के मसाले में पकाकर रसा स्वादान करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत रुचि को इतिहास लेखन में प्रधानता देने का अभिप्राय पक्षपात का प्रतिरोपण करना है। नंबर 10, इतिहासकार नैतिक न्याय नहीं दे सकता। इस प्रकार का अभिमत है कि इतिहासकार अपनी पुस्तक के पृष्ठों में आने वाले व्यक्तियों के जीवन पर नैतिक न्याय देने के लिए दायित्व का अनुभव करता है। नंबर 11, इतिहासकार नैतिक न्याय नहीं दे सकता। न्याय देना इतिहासकार की सीमा से बाहर है। इतिहास में यातनाएं स्थानीय होती हैं। इतिहास में प्रत्येक महान विजय के साथ पराजय भी स्थितियां भी होती हैं। इतिहासकार के पास कोई ऐसा मानदंड नहीं है कि निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके कि कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने को कष्ट उठाना पड़ा। कार कहते हैं कि इतिहास वह है जो मूल्यों के इतिहासित चरित्र को जानता है, न कि वह जो मूल्यों के लिए इतिहासातीत वस्तुवादिता। नंबर 12, नैतिकता का इतिहास इतिहास का वास्तविक अंश नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में साक्ष्य के संबंध में प्रोफेसर कार का कहना है कि सभी तथ्य ऐतिहासिक अध्ययन का आधार है, परंतु कुछ तथ्य मदोन्मत व्यक्ति सापेक्षवादी तथा कोमितन धर्मावलंबियों की भांति विवेकहीनता वश तथ्यों के आराधक होते हैं। प्रायः भूल जाते हैं कि व्याख्या के अभाव में तथ्य अनुपयोगी तथा नीरस है। नंबर 13, इतिहास के कारण पर अपना विचार देते हुए प्रोफेसर कार ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। अतीत के घटनाओं का क्रमबद्धता देना तथा काल और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। जहां पर कर्नल आर पामर कहते हैं कि मानवीय कार्य व्यापार में सब कुछ संभव है, तो वहीं पर प्रोफेसर कार का कहना है कि पामर का यह तर्क अर्थहीन तथा मिथ्यापूर्ण है। वे यह भी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के पीछे दैवीय शक्ति निर्णायक होती है। नंबर 14, इतिहास में संयोग के संबंध में प्रोफेसर कार का अभिमत है कि संयोग के महत्व को मान्यता देने का अर्थ इतिहासकार के मस्तिष्क का दिवालियापन है। द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों के बीच यह दृष्टिकोण की परीक्षा एक लॉटरी है, हमेशा लोकप्रिय होगा। किसी क्रांति अथवा युद्ध का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, परंतु शरद में जंगली बत्तखों के शिकार का परिणाम का अनुमान कठिन प्रतीत होता है। स्टालिन की सफलता का कारण ट्रॉट्स्की की निष्क्रियता रही है, अपितु स्टालिन का व्यक्तित्व और उसके साथ अनेक कारण रहे होंगे। अतः इसे संयोग कहकर अन्य कारणों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, ईएच कार का अटूट विश्वास है कि इतिहासकार की अस्थियों में भी भविष्य समाहित रहता है। क्यों पूछने के अतिरिक्त इतिहासकार प्रायः पूछता है कि किधर, उसका संकेत निहित भविष्य की ओर होता है। नंबर 16, ऐतिहासिक अवश्यंभावित के संबंध में प्रोफेसर कार का मत है कि मानवीय कार्यों का परिणाम प्रायः उसकी इच्छा के विपरीत होता है। 1917 की रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक तथा रूढ़िवादी चर्चा के बीच संघर्ष अवश्यंभावी था। कार ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। उसने कहा है कि अवश्यंभावी अथवा अनिवार्य के स्थान पर संभाव्य लिखना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। वे यह भी मानते हैं कि मनुष्य ईश्वरीय इच्छा के अनुसार कार्य करता है। नंबर 17, कार ने कहा है कि इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है, अतः व्याख्या एक प्रकार का दूरदर्शी यंत्र है जिसकी सहायता से इतिहासकार को अतीत की व्याख्या का यंत्र प्रदान कर सकता है। अतीत भविष्य पर प्रकाश डालता है और भविष्य अतीत पर, यह तथ्य एक प्रकार से इतिहास की व्याख्या भी है। इस प्रकार से ईएच कार ने इतिहास के प्रति इसके विभिन्न पक्षों पर अपना अभिमत प्रस्तुत किया है। वे इतिहासकार होने के साथ ही साथ इतिहास दर्शन के सिद्धांतों के निर्माणकर्ता भी थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू की राष्ट्रवादी विचारधारा। पंडित नेहरू एक आदर्श राष्ट्रवादी थे। अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए जिसके पास अतीत की एक धरोहर है, उसके लिए यह बात और भी सही थी। इन भावनाओं से ओतप्रोत नेहरू जी ने साम्राज्यवाद की दीवार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहा। उन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। इसी राष्ट्रवाद ने उनको स्वतंत्र छड़ों की वास्तविक नेहरू जी का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता की भावना से परिपूर्ण है। वे हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। देश के विभिन्न हो जाने के बाद भी उन्होंने भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक जाति के लोगों का अपना उदारता अर्पित की। उनका राष्ट्रवाद हिंसात्मक ना होकर अहिंसात्मक और शांति का है। इसका अर्थ, उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को विश्व मानवता का जामा पहनाया। वे शांति के पुजारी थे, इसलिए उनका राष्ट्रवाद विश्व मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीय चिंतन राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के प्रति जितनी आस्था दिखाई उतनी शायद किसी अन्य में ना थी। नेहरू जी अनुभव करते थे कि परमाणु शास्त्रों के इस युग में युद्ध का अर्थ होगा सभ्यता के सभी मूल्यों का विनाश। यही कारण था कि वे पारस्परिक सामंजस्य का वातावरण बनाने की ओर अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की विदेश नीति तटस्थता और पंचशील से संचालित थी। चीन के प्रधानमंत्री के साथ पंचशील के सिद्धांतों पर 1954 को हस्ताक्षर करके उन्होंने बुद्ध, महावीर और गांधी की अहिंसा को स्वीकारने का प्रमाण प्रस्तुत किया। पंचशील के सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय थे और सभी जन उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। नेहरू आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते थे। समाजवाद को एक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में नेहरू जी ने स्वीकार किया। वे मार्क्स के इस तरह से सहमत नहीं थे कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण साम्राज्यवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद एवं युद्धों का जन्म होता है। नेहरू जी ने समाजवाद को लोकतंत्रात्मक समाजवाद कहकर संबोधित किया। उनका समाजवाद जड़वादी न होकर सदैव परिस्थितियों के अनुकूल बदलने वाला था। लोकतंत्र को नेहरू जी सम्मान अवसरों का प्रतीक मानते थे। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समानता चाहते थे। नेहरू का लोकतंत्र सामाजिक और धर्म निरपेक्षता की मान्यताओं पर ही आधारित था। देश में रहने वाला हर अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सके, यही वह चाहते थे। लोक कल्याणकारी सभी मान्यताओं को उन्होंने स्वीकार किया। लाल बहादुर वर्मा ने जवाहरलाल नेहरू की इतिहास दृष्टि के संबंध में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, पर होते तो यह जगत के लिए उपलब्धि होती। उनके विचार से अतीत, वर्तमान और भविष्य को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका संबंध अविभाज्य है। उनको अतीत में महज इसलिए दिलचस्पी थी कि वर्तमान का स्रोत अतीत है। उन्होंने तथ्यों को विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा और समझा ताकि वे बेहतर ढंग से समझ में आ सके। उनकी पुस्तकों में जिस इतिहास का दृष्टि का परिचय मिलता है, वह उनके समकालीन इतिहासकारों में देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चिंतन। नंबर एक, वे अन्याय को मौन रहकर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। वे स्वयं एक इतिहास थे। भारत की सत्ताधारी शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करके अपनी कर्म सामर्थ्य का परिचय दिया। उन्होंने पद दलितों के पक्ष में और शोषण के खिलाफ क्यों नहीं किया। वे समता लाने के पक्ष में थे। उन्होंने भारत की क्या नहीं किया। वे समता लाने के पक्ष में थे। उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी को समाजवाद का नया चिंतनशील स्वरूप दिया। नंबर दो, डॉक्टर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का उद्देश्य भारत के विभाजन से संबंधित जानकारी और कारणों को से परिचित कराना था। भारत के विभाजन के लिए उन्होंने 8 कारणों को प्रमुख माना है। दोषी लोगों में मुख्य रूप से उन्होंने अखंड भारत के समर्थकों को बताया है। लोहिया ने भी लिखा है, अखंड भारत के जय घोष करने वाले वर्तमान जनसंघ तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ब्रिटेन और मुस्लिम लीग की विभाजन के कार्य में मदद की। यदि हम उनके उद्देश्यों की अपेक्षा उनके कार्यों के परिणामों को अध्ययन करें, उन्होंने मुसलमानों को एक ही राष्ट्र के अंतर्गत हिंदुओं के समीप लाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। यह पृथक रखने की प्रवृत्ति ही विभाजन का आधारभूत कारण बनी। नंबर तीन, गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रति वे सम्मान करते थे। लोहिया का समाजवाद गांधी जी से भी प्रभावित है। मार्क्स के व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने संबंधी विश्लेषण को समाजवादियों ने स्वीकार किया। डॉक्टर लोहिया के लिए यह विश्लेषण महत्व रखता है। गांधीवाद और मार्क्सवाद की इस प्रभावशीलता के बाद भी लोहिया ने दोनों के दर्शन को एकाकी अनुभव किया। वे संतुलन और समन्वय के समर्थक थे। वे मार्क्स के पदार्थ चिंतन से हटकर चेतना के विषय में अधिक उदारता पूर्वक सोचते हैं। नंबर 4, लोहिया के लिए वामपंथी राष्ट्रीयता, उग्रपंथी धार्मिकता, उग्रपंथी सामाजिकता तथा उग्रपंथी राजनीतिक किसी रूप में समाजवाद की पूर्णता की प्रतीक नहीं बन सकती, क्योंकि इनमें से किसी एक को स्वीकार करने का अर्थ है समाजवाद के स्वरूप को खंडित करना। लोहिया का समाजवाद राष्ट्रीय सीमाओं से उन्मुक्त था, भौगोलिक सीमाओं को तोड़ने का समर्थन करके विश्व सरकार के समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने बिना पासपोर्ट विश्व भ्रमण की योजना बनाई। नंबर 5, लोहिया मानते थे कि जिस देश की और जाति की अपनी भाषा नहीं होती उसका पतन अवश्य होता है। वह अंग्रेजी हटाने के समर्थक थे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा को सम्मान दिए जाने के भी समर्थक थे। राष्ट्र को एक इकाई और कड़ी के रूप में जोड़ने के लिए उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया। नंबर 6, कृषि की उन्नति और विकास के लिए वे कृषक के पास भूमि होनी चाहिए इसके समर्थक थे। वे लघु उद्योगों और छोटी मशीनों को भी महत्व देते थे। नंबर 7, लोहिया स्त्री पुरुष की समानता चाहते थे। किसी भी क्षेत्र में असमानता को वह पसंद नहीं करते थे। उन्होंने 7 प्रकार की क्रांतियों का समर्थन किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोहिया एक इतिहास पुरुष थे। उन्होंने स्वयं इतिहास बनाकर संपूर्ण आजादी और समाजवादी विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने देश की जनता के बीच रहकर भारत की कमजोरी का अनुभव किया।